बोल।
हरे कृष्ण। हरे
हम आठवां श्लोक साइड करते हैं। तपर्यदा शुक्रमकायमव्रणम् अश्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् कवीर्मनीषी परिभू स्वयंभू याथाथितो अर्थान् व्यददा शाश्वतीभ्यः समाभ्यः तो मतलब वो जो परम सत्य है कैसे समझता है। सपर्यदा शुक्रम, शुक्र मतलब सबसे शक्तिशाली, अकायम उनका कोई शरीर नहीं है, काया नहीं है, अव्रणम सपर्यदा शुक्र अकायम अव्रणम, अव्रण मतलब वो सब निंदा के परे हैं। अश्नाविरम उनके जो शरीर है उनमें कुछ रक्त की पेशियां स्नायु नहीं है। अश्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम, वो परम शुद्ध है और पाप के परे है, और वे कवि है, सब बहुत बुद्धिमान है। मनीषी वो अपने मन के स्वामी है, वो बड़े तत्वज्ञानी है। परिभू स्वयंभू, वह स्वयंभू मतलब वह सेल्फ सेटिस्फाइड, वह संतुष्ट, आप संतुष्ट है, किसी और पर निर्भर नहीं है। परिभू बहुत महान है। या था असत्यो अथो अर्थान यदाच शाश्वती समाप्य, उसका मतलब क्या है, शाश्वती व समाप्य, सनातन काल से वो क्या कर रहे हैं, जिस जो उसे लोग मानते हैं, कामना करते हैं, वो उनके आशा उनकी इच्छा पूरी करते हैं। तो अभी क्या हो रहा है इस विभाग में, चौथे से आठवें श्लोक में जो विभाग है, चौथे और पांचवें श्लोक में वो परम सत्य कैसे विरोधास्पद लगता है वो बताया। फिर छठे और सातवें श्लोक में बताया आत्मज्ञान प्राप्त करता है जो व्यक्ति, उसकी दृष्टि क्या होती है, और जो आत्म तत्व जो समझा है वह व्यक्ति परम सत्य को किस तरह समझता है। मतलब कल आपको याद बता रहा था, पात्रता के बिना हम भगवान को समझेंगे तो गलत समझ बैठेंगे, रासलीला को हम भौतिक समझ बैठेंगे। तो अगर पात्रता प्राप्त हो गई है तो पात्रता प्राप्त हुए व्यक्ति भगवान को कैसे समझता है वो बताया गया है। तो यहाँ पे अकायम, अकायम मतलब बताया गया कोई शरीर नहीं है उनका। अगर शरीर नहीं है उनका, इसका मतलब निर्गुण निराकार है वो, ऐसे बोल सकता है कोई? अकायम स्पष्ट रूप से बताया उनको शरीर नहीं है, निर्गुण निराकार है। पर हम देखते हैं वहीं पे क्या बताया है, अश्नाविरम, अश्नाविरम मतलब उनके शरीर में कोई रक्त की पेशियां नहीं है, पेशियां नहीं, रक्त के नाड़ियां नहीं है। तो अभी अगर बता दिया पहले शरीर में ही है तो फिर नाड़ियां नहीं है बोलने की जरूरत क्या है, है ना। अगर हम बता रहे हैं कि मैं उस घर में गया था, उस घर में फर्नीचर नहीं है, तो फर्नीचर नहीं है बोलने के बाद वापस उस घर में शोकेस नहीं है बोलने की जरूरत है क्या, नहीं। तो क्यों बता जा रहा है ऐसे, तो अकायम का मतलब उनकी कोई भौतिक काया नहीं है, और अश्नाविरम मतलब कि उनका शरीर जो है, उनका दिव्य शरीर होने के कारण हमारे शरीर में नाड़ियां होती है रक्त जाने के लिए, संवेदना जाने के लिए ऊपर नीचे, तो वैसे नहीं है। तो उनका जो शरीर है सच्चित आनंद है, तो भगवान का जो रूप है वो दिव्य है, और वह दिव्य रूप क्योंकि भगवान स्वयंभू है, सर्वशक्तिशाली, परिभू है, सर्वशक्तिशाली है, तो इसीलिए वे भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। तो भौतिक जगत में कैसे प्रकट होते हैं, विग्रह के रूप में। श्रीपाद रामानुचार्य बताते हैं कि जो परम सत्य पांच रूप में आते हैं, पांच प्रकार के परम सत्य के रूप होते हैं। सबसे पहले है परम, परम मतलब जो भगवान आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, सनातन धाम में, वैकुंठ में जो भगवान रहते हैं उनको, जो उनका स्वरूप है उनको पर कहते हैं। फिर दूसरा है व्यूह, व्यूह मतलब जो भौतिक जगत की सृष्टि के लिए विस्तार करते हैं। चतुर्व्यूह आपने सुना है, चतुर्व्यूह कौन है, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। तो पहले है पर, पर मतलब जो पर आध्यात्मिक जगत जो रह रहे हैं वो भगवान स्वयं, नारायण विष्णु कृष्ण ये सब। और फिर व्यूह मतलब वह भगवान जब भौतिक जगत की सृष्टि करने के लिए आते हैं तो वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न होता है, इनके द्वारा वो सृष्टि करते हैं। हरे कृष्ण। और फिर तीसरे हैं वो होते हैं विभव। विभव मतलब वो एक भौतिक जगत में अवतार के रूप में आते हैं। और चौथे जो कहते हैं तो जैसे राम लक्ष्मण ये सब आए थे, राम नरसिम्हा हयग्रीव ये सब आए थे, ये विभव। और फिर अंतर्यामी, अंतर्यामी मतलब जो परमात्मा है, ये चौथे है। और पांचवे कहते हैं अर्च विग्रह, अर्च अवतार। तो कहते हैं जो अर्च है, जो जो भगवान का विग्रह है, वो भी भगवान का अवतार है। और श्रीपाद रामाचार्य के एक अनुयायी है, महान पिलाई लोकाचार्य, वो कहते हैं कि इन पांचों अवतारों में सबसे कृपालु है अर्च अवतार। क्यों? ये पांचों अवतारों में पांच कौन से? पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामी और अर्च। तो इन सब में सबसे करुणा में है वो है अर्च अवतार। क्यों? क्योंकि जो पर है वो आध्यात्मिक जगत में है और जीवात्मा उनसे कोई संबंध प्रस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि तो आध्यात्मिक जगत में है। जो व्यूह है वो भी जीवात्माओं से कोई संपर्क नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बहुत सृष्टि करते हुए तो मोक्ष दक्षा विष्णु महाविष्णु से दूर है हमसे, वैसे ही है। और जो विभव है, अवतार आए थे पर आए और चले गए, अभी कहाँ है संबंध उनसे। अंतर्यामी हमारे साथ है, पर जब तक हम बहुत प्रगतिशील नहीं होते हैं तब अंतर्यामी से हम संबंध नहीं जोड़ सकते। तो अभी हमारे भौतिक स्तर पे हम सिर्फ अर्च अवतार से संबंध जोड़ सकते हैं। इसीलिए इन पांचों भगवान के अवतारों में से जो अर्च विग्रह है, अर्च अवतार जो है, वो सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ मतलब सर्व कृपालु है। तो अभी ये भगवान जब आते हैं तो साधारण लोग कहेंगे कि वास्तव में ये तो एक पत्थर है। तो खास करके जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति के बाहर जो क्रिश्चियन इस्लाम जो जू धर्म है उनमें मूर्तियों की पूजा का बहुत खंडन किया गया। और आप जानते हैं इसलिए जब मुसलमान लोग कुछ वृंदावन को जीत वृंदावन पे आक्रमण करते थे तो बहुत से विग्रहों को उन्होंने अपराध करने का प्रयास किया, फिर सब भक्तों ने वो विग्रहों को जयपुर लेके चले गए। और ऐसे जगन्नाथ जी पे भी आक्रमण करने का प्रयास हुआ है। तो वास्तव में ऐसे ये जो मूर्ति के प्रति घृणा क्यों है वो हम चर्चा करेंगे। तो उसके पहले हमें समझना पड़ेगा कि भगवान वास्तव में विग्रह के रूप में आते कैसे हैं। और फिर वो अगर हम समझेंगे तो क्या समझेंगे, कैसे विग्रह के रूप में जब वो आते हैं तो वास्तव में हमसे भगवान ही है। तो जो इंग्लिश में मैंने किताब लिखी है छोटी सी, आइडल वर्शिप और आइडियल वर्शिप। आइडल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा अपने आदर्श पूजा है। तो ये विस्तारित है तो मैं इसके आज उनसे कुछ चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले अगर हमें समझना है तो मैं पहले दिन ये उदाहरण दिया था कि अगर किसी को किताब कोई व्यक्ति किताब देखता है और व्यक्ति यदि अनपढ़ है और न तो वो पढ़ना नहीं जानता और ये भी जानता नहीं कि भाषा नाम की कोई वस्तु है तो जो किताब देखेगा तो किताब क्या देखेगा, ये 8 इंच 12 इंच और 100 ग्राम के एक वस्तु है। और वो अगर लाइब्रेरी में जाएगा, लाइब्रेरी में जाके देखेगा तो क्या ये कागज क्यों लोग घंटे घंटे देखते हैं, क्या समय बर्बाद कर रहे हैं, कुछ काम नहीं है क्या उनको। तो क्या है, वो अगर शिक्षण नहीं प्राप्त करता है कि भाषा क्या है और खुद भाषा सीखता नहीं है तब तक उसको वो किताब की कीमत समझेगी नहीं। अभी क्या किताब 8 इंच बाय 12 इंच 100 ग्राम की वस्तु है, पर उतनी ही नहीं है वो। और जब वो भाषा सीख लेगा तब एक नई दृष्टि आ जाएगी। ठीक उसी तरह से कोई व्यक्ति कह सकता है कि आप मंदिर में जाते हैं और एक पत्थर के सामने खड़े रहते हैं, उसको सजाते हैं, उसको पूजते हैं, उसके पास में प्रणाम करते हैं और क्या आप समय बर्बाद कर रहे हैं। तो वास्तव में कोई बुद्धिमान व्यक्ति है वो किताब देखेगा तो किताब से घंटे घंटे इतना ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उसी तरह से जो विग्रह की पूजा है वास्तव में एक व्यक्ति कहेगा कि ये मूर्खता है, क्या आप इतना समय बर्बाद कर रहे हैं। पर जो भक्त है वह क्यों समझता है, क्योंकि उसको सबसे पहले एक जो भक्ति की भाषा है वह सीख गया है। और भक्तों भगवान से वो भावनाओं का आदान प्रदान कर रहा है। तो इसलिए भगवान भगवद गीता में कई बार कहते हैं कि अगर आपको आध्यात्मिक तत्व समझना है तो ज्ञान चक्षु चाहिए। ज्ञान चक्षु के बिना हम कुछ नहीं समझ सकते। ज्ञान चक्षुषः 15वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि ज्ञान चक्षु यदि नहीं है तो शरीर में आत्मा कैसे रहता है, कैसे भोग करता है, कैसे बाहर जाता है, कैसे दूसरे में आता है, कुछ समझ नहीं पाएगा। और 13वें अध्याय के आखिरी श्लोक में वही सब ज्ञान चक्षु अपने इस्तेमाल करते हैं। तो ज्ञान चक्षु यदि नहीं है तो विग्रहों की पूजा हम समझ नहीं पाए। तो इसीलिए ज्ञान चक्षु क्या है, तो वास्तव में इसमें बताया था कि ऐसे वैदिक शास्त्र में नहीं, सब धर्मों में भगवान का रूप के बारे में वर्णन है। तो ऐसे नहीं है कि कैसे वैदिक शास्त्र में, तो अभी कई लोग कहते हैं कि ये एंथ्रोपोमॉर्फिज्म नाम की पत्रिका है कि हम सब हमारा मानव का शरीर है, इसीलिए हमने कल्पना की भगवान की एक मानव ही होगी। अगर कोई हाथी हो गए तो हाथी में से सबसे बड़ा हाथी होगा उसको राजा बना देते हैं, वैसे हमने सबसे सुंदर मानव को सबसे सुंदर दिखने वाले मानव को भगवान बना दिया, ऐसे लोग कह रहे हैं। पर वास्तव में हम देखते हैं कि वैदिक संस्कृति में भगवान के जो विग्रह होते हैं केवल मानव रूप में ही नहीं है, वो अनेक रूपों में है। नरसिंह है, ऐसे रूप में दिखेगा ही नहीं हमको, हमको साधारण सृष्टि में आधा मानव आधा पुरुष दिखते नहीं। तो ये वास्तव में हमने कल्पना नहीं की है। वास्तव में आपको भगवद गीता में पता है वो श्लोक पहला 15वें अध्याय पहला श्लोक ही कहते एक उल्टा पटक वृक्ष है जिसके जो जड़ है ऊपर है और इसके जो डालियां है नीचे है। तो उसका मतलब क्या है, ये भौतिक जगत एक प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत का। जैसे एक प्रतिबिंब होगा नदी मेरे सामने, तो प्रतिबिंब में अगर पेड़ उल्टा दिखेगा, तो अगर ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत प्रतिबिंब है तो यहाँ पे अगर हमको रूप दिखाई दे रहे हैं, अभी हमारा रूप जो है, हमारा रूप कहाँ से आया है, हमारा रूप भगवान के रूप से आया है। तो वास्तव में ऐसे नहीं है कि हमारा मानव रूप है इसलिए हमने भगवान को मानव का रूप दिया है, ऐसे वास्तव में भगवान का एक रूप है और सारे यौन भगवान का एक सनातन शाश्वत रूप है और सारे योनियों में 84 लाख योनियों में जो योनि जो शरीर भगवान के पास जाने के लिए सबसे अनुकूल है उस शरीर को भगवान ने अपने समान रूप दिया है। ऐसे नहीं है कि हमने भगवान का एक कल्पित रूप किया है, भगवान का रूप ओरिजिनल है। और फिर भगवान ने जब सारी सृष्टियां की, सारे रूपों की, सारे योनियों की सृष्टि की, सबको एक एक रूप दिया, उसमें जो रूप जो योनि जो शरीर उनके सबसे करीब है, उनके चेतना में उस जो उनके भगवत भक्ति के सबसे अनुकूल है रूप जो शरीर, वो शरीर वो योनि को उन्होंने अपने शरीर के जैसा ही शरीर दिया है। तो इसीलिए भगवान का रूप ओरिजिनल है और हमारा जो रूप है वह भगवान के रूप पर आधारित है। तो ऐसे अभी ये सब चर्चा नहीं करूंगा मैं। बाइबल में अनेक श्लोक है भगवान के हाथ, भगवान के पैर, भगवान के कान ऐसे बताया गया है। इस तरह से भगवान की आंखें, तो मानव को भगवान के प्रतिमा में बनाया गया है जो बताया गया है बाइबल में। कहीं वैसे नहीं बताया गया भगवान को मानव की प्रतिमा में बनाया गया है। इस तरह से अभी अल्लाह अभी कुरान में भी बहुत उल्लेख है। यहाँ पे SBN है, श्रीमद् भागवतम ही है, शाह बुखारी है, ये खादिस है वहां पे। तो अल्लाह के हाथ पैर, उसके हंसना, उनकी आंखें, उनका मुंह, बहुत वर्णन है। तो हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम का विस्तार वर्णन है, ब्रह्म संहिता में वर्णन है, दूसरे स्कंद में परमात्मा के बारे में वर्णन है, फिर दशम स्कंद में भगवान का व्यक्तिगत रूप बताया गया है। तो अभी इसके बारे में मैं चर्चा की थी कि शास्त्र बताए कभी बताते हैं भगवान निर्गुण है, कभी बताते हैं सगुण है। वैसे क्यों बताते हैं, जो कोई विद्यार्थी है उसको 60% गुण मिलते हैं। मैंने उदाहरण दिया था याद है आपको, अगर कोई विद्यार्थी है, अभी एक पिताजी है, दो भाई हैं, दो पुत्र हैं, तो एक पुत्र हमेशा अच्छे मार्क्स आता है, 80% मार्क्स आता है, बहुत अच्छे मार्क्स, और दूसरा विद्यार्थी है बिल्कुल पास हो गया थोड़ा बहुत, 40% आता है। और आज दोनों का रिजल्ट आया है और दोनों को 60% मार्क्स मिले। तो जो 40% वाला रहता है आएगा 40% देंगे शाबाश। फिर दूसरा लड़का आएगा ये 7% में बदमाश क्या दिया। वो बोले अरे मुझे भी 60 मिले उसको भी 60 मिले मुझे उसको शाबाश उसको भी बदमाश बोल। ऐसे क्यों क्यों ऐसे? क्योंकि उसके लिए 40 से 60 ऊपर जाना है और तुम्हारे लिए 80 से 60 पे आना नीचे आना है। तो ठीक उसी तरह से क्या है इसका मतलब क्या है कि शास्त्रों में हम देखते हैं कि सब लोग भौतिक जगत में भौतिक रूपों की व्यापारी होते हैं। भौतिक रूप केवल स्त्री का ही रूप नहीं प्रकार का रूप होता है घर का रूप होता है मोबाइल का रूप होता है सब लोग जो आकर्षित तो रूप से आकर्षित होते हैं। तो उसमें तो ये जो व्यक्ति समझता है सबसे पहले कि ये सब रूप माया है ये सब रूप माया है ये सब रूप अस्थाई है ये सब रूप ये सब अशाश्वत है और ये दुख का कारण है तो शास्त्र कहते हैं शबाश शबाश। तो फिर तुम 40 से 60% से आ गए 40% ने कहा जो भौतिक रूपों को ही अस्थि मान के उनके पीछे भाग रहा है अरे इससे मुझे भोग मिलेगा इससे आनंद मिलेगा सब पीछा कर रहा है। तुम समझ गए कि ये सब रूप कुछ सुख नहीं देते हैं ये सब रूप कल्पना है ये केवल ये सब अस्थाई है। तो वो क्या हो गया 40 से 60 पे आ गए। पर अगर कोई कहता है कि भगवान का जो रूप है अरे वो भी पत्थर का है वो भी कल्पना है वो भी माया है तो क्या है वो 80 से 60 पे आ गया। तो उसको तो जो ब्रह्मवादी जो मायावादी लोग हैं वो एक तरह से सही है क्योंकि वो समझते हैं कि इस जगत का रूप माया है। तो जहां तक वो समझते हैं इस जगत का रूप माया है तो भगवान कहते हैं शबाश बहुत अच्छा। पर अगर वो कहते हैं भगवान का रूप माया है तो भगवान कहते हैं बदमाश। तो ये प्रगतिशील आपको उदाहरण समझ में आ गया मैं क्या बोला कि रास्ते में स्तर है और जो ऊंचे के स्तर पे है उधर से नीचे आता है वो अगर वो समझ जाए कि भौतिक जगत के रूप माया है बहुत अच्छा है और प्रगति कर रहे हैं। पर अगर वो सोचेंगे कि भगवान के रूप माया है तो फिर वो अधोगति हो रही है। तो ठीक उसी तरह से जो लोग सोचते हैं रूप मतलब भौतिक रूप ही होगा उनके लिए बताएगा कि परम सत्य कोई रूप नहीं है आप समझ लो कि आपको रूपों के परे जाना है। पर जब उसके परे जाते हैं तो उनको बताते हैं बाद में कि वास्तव भगवान के दिव्य रूप भी है। तो जब भगवान निग्रह के रूप में आते हैं तो कैसे आते हैं जैसे नरसिंहदेव वो एक पत्थर से ही प्रकट हो गए तो वैसे भगवान अलग अलग तरह से विग्रह के रूप में आ सकते हैं। जब विग्रह के रूप में आते हैं तो हमें क्या करना है कि जो शास्त्रों में बताया गया है उसके अनुसार पूजा उसके अनुसार ही होना चाहिए। अगर अभी आप पोस्ट बॉक्स है तो सोचता है व्यक्ति कि मेरे घर से बहुत दूर है पोस्ट बॉक्स तो मैं क्या करता हूँ उतना दूर कौन जाएगा खर्च डालने के लिए तो मैं मेरे घर के बाजू में एक पोस्ट बॉक्स बना देता हूँ एक बक्सा बना देता हूँ उसको लाल रंग दे देता हूँ तो क्या होगा उसमें वो खत डालेगा तो कुछ होगा खत वहीं पर रहेगा कहीं नहीं जाएगा। ठीक उस तरह से अगर व्यक्ति सोचता है कि अरे मैं मुझे भगवान की पूजा करनी है तो मैं खुद मैं शास्त्रों में जो रूप बताया उसका कौन बनाना था उसे कौन बनाएगा विग्रह मूर्ति मैं क्या करता हूँ मेरे कल्पना से बना देता हूँ तो फिर क्या होगा उसकी कल्पना से बनाएगा तो कुछ फायदा नहीं होगा उससे कुछ उससे कुछ पूजा होगी नहीं। तो जिस तरह से पोस्ट बॉक्स जो होता है वो कैसे होना चाहिए जो सरकार मान्य होना चाहिए जैसे वैसे जो विग्रह पूजा हो रही है वो शास्त्र मान्य होनी चाहिए शास्त्र मान्य नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। गड़बड़ लग रही है आपको तो अगर कोई कल्पना से अपने मन की कल्पना से कुछ छोट बना लेता है तो उससे कुछ हिम्मत नहीं होगी। तो मान लीजिए अगर कोई माँ अपने बच्चे को बोल दे वो घर साफ रखना चाहिए घर साफ रखना चाहिए घर में कहीं कोई कागज गिरा होगा देखा कागज उठाने का फाटने का कच्चे कच्चे पर मिला बहुत अच्छा लगता फाड़ना तोड़ना अच्छा लगता बच्चे तो तुरंत क्या करता है तो उस दिन उसके पिता जा रहे हैं बाहर तो उनके जेब से एक 5 रुपए का नोट जगह गया और वो चले जा रहे, मैं कागज भी भेजा था पायलट को, रुको क्या कर रहे हो, कुछ और क्यों कर रही हो, तुमने ही बताया मुझे कागज फाड़ने को, कागज फाड़ने, ये कागज नहीं है ये लक्ष्मी देवी है, तो कागज ही है, नहीं ये लक्ष्मी देवी है, नहीं ये कागज है, क्या अच्छा लगता है, मुझे पेड़े बोल चलो, ये कागज लेके जाओ दुकान में और तुम पेड़े, कागज से मैंने पेड़े मिल सकते हैं, जाओ लेके जाओ, और लेके जाता है तो उससे उसको 200 पेड़े मिल जाते हैं, ये कागज से 200 पेड़े कैसे मिल गए, समझे ये साधारण कागज नहीं है, हाँ फिर वो समझता है। तो क्या है कि जो भौतिकवादी व्यक्ति है वो अगर भगवान के विग्रह को, भगवान के नाम को, वो सोचता है भौतिक ही है, क्योंकि तो जो 500 रुपए का नोट है वो क्या वो कागज है, वो कागज से बनाया हुआ है, पर वो कागज ही नहीं है, इट इज नॉट ओनली पेपर, वो कागज है, पर क्योंकि वो अभी करेंसी नोट बन गया है तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। ठीक उसी तरह से वो कहता है कि विग्रह तो पत्थर ही है, हाँ ठीक है वो जो पत्थर से बनाए गए हैं वो, पर जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उनका स्वरूप बदल जाता है और भगवान स्वयं वहां पर प्रकट होते हैं। और जैसे वो बालक कब समझेगा वो 500 रुपए की कीमत, जब वो 500 रुपए लेके मिठाई लाएगा और मिठाई खाएगा तब। ठीक उसी तरह से व्यक्ति विग्रह का विग्रहों की दिव्यता कैसे समझेगा, जब वो विग्रहों की पूजा करेगा, विग्रहों की सेवा करेगा, तब उसको देखेगा कोई साधारण पत्थर से प्रदर्शन से उनकी सेवा से उनके उनके श्रृंगार से इतना आनंद नहीं मिलता है, इतनी संतुष्टि नहीं मिलती है, इसलिए विग्रह नहीं बना, तो प्रयोग करना होगा तो फिर हम समझ सकते हैं। तो ये जो है ये मैं बता रहा था कि अलग अलग धर्मों में भगवान के रूप का उल्लेख है, उनके हाथ, उनके पैर, उनके आंखें, पर उसका भगवान कैसे दिखते हैं इसका कोई विस्तारित वर्णन नहीं है। तो आप जानते हो एक माइकल एंजेलो नाम के बड़े शिल्प कलाकार थे, 15वीं-16वीं शताब्दी में थे वो, और वो क्रिश्चियन भी थे, वो इटली में रहते थे। तो एक बार उनको बताया गया कि एक इटली में बहुत बड़ा चर्च बनना है सिस्टाइन चैपल नाम का, तो उस चर्च में उनको बताया कि आप क्या करो, उसके जो सीलिंग है, जैसे हमारे मायापुर के मंदिर का सीलिंग है, मायापुर प्रभुपाद समाधि का सीलिंग है समाधि मंदिर का, तो आप में से कितने लोग मायापुर गए हैं अब तक, कुछ वक्त है, ओके। तो आपने देखा बहुत सुंदर वहां पे चित्र है, तो वो माइकल एंजेलो को बताया कि उस तरह से आप क्या करो, वो सीलिंग में आप जो बाइबल के दृश्य है उसका चित्रण लो। तो बाइबल का एक दृश्य है कि कैसे भगवान जो एडम है उसको, भगवान जो मानव है उसको अपनी कृपा दे रहा है, तो जब उसको चित्रण करना था तो मानव को चित्रण किया, तो मानव को शक्तिशाली सुंदर अच्छा मानव का चित्रण किया, तो जब भगवान का चित्रण करना था तो वहां के पादरी दोस्त ने पूछा भगवान कैसे दिखते हैं, फिर उन्होंने बाइबल पढ़ा, बाइबल में सुनाया, तो बिशप को पूछा, बिशप चर्च का वो एक एक शहर का जो चीफ होता है उसको बिशप बोलते हैं, बिशप यहाँ पोप को चले गए, पोप यानी सारे विश्व भर का चर्च जो होता है सबका जो हेड होता है, किसी को पता नहीं भगवान कैसे दिखते, फिर उन्होंने चाहा कि भगवान सबसे आदि है, सबसे पिता, सबके पिता है, तो उसका मतलब भगवान सबसे बुजुर्ग है, सबसे बूढ़े है, तो इसीलिए उन्होंने क्या चित्रण किया कि भगवान को एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में चित्रण किया। तो यहाँ पे आप उस चित्र में दिख रहे हैं, ये उनके अनुसार भगवान है, तो ये मानव है और ये भगवान है। तो अगर इस चित्र देखते हैं तो क्या विचार आता है मन में, तो क्या विचार होता है मन में, कौन अधिक आकर्षित दिख रहा है, मानव या भगवान? तो दुर्भाग्यवश क्या हो गया कि इस तरह से इसके हमें यहाँ पे क्रिश्चियनिटी की निंदा नहीं करनी है, पर समझना है कि उनके धर्म में भगवान के रूप का वर्णन है ही नहीं, तो उन्होंने क्या कर दिया, जीसस को ही भगवान बना दिया है, असल जीसस की पूजा करते, पर जीसस ने मैं भगवान हूं ऐसे कभी नहीं कहा, आई एम द सन, मैं पुत्र हूँ और मेरे पिता भगवान ने मुझे भेजा हुआ है। तो इस तरह से भगवान के बारे में वर्णन इन शास्त्र में है ही नहीं, इस तरह से वो कल्पना करते हैं। और क्या होता है, कल्पना करते हैं और कल्पना से जैसे इस प्रकार से आता है, वास्तव में इस प्रकार से भगवान का चित्रण किया है भगवान को बूढ़े व्यक्ति के रूप में, क्या तो क्या है वास्तव में भगवान के प्रति अपराध है। भगवान को ऐसे बूढ़ा कुछ अच्छा दिखने वाले व्यक्ति बनते बताना, ये कल्पना से करना ये अपराध है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो क्या हुआ था, जब इस्लाम धर्म चालू हुआ था सातवीं शताब्दी में, तो इस तरह से बहुत से कल्पित मूर्तियों की पूजा हो रही। तो जब कल्पित मूर्तियों की, जो मक्का नाम की जगह है जहाँ पे मोहम्मद रहते थे, वहाँ पे काबा नाम का एक बड़ा धार्मिक जगह है, तो वहाँ पे ऐसे बहुत से कल्पित मूर्तियों की पूजा हो रही। तो जब मक्का से मोहम्मद मदीना चले गए, क्योंकि उन पे थोड़ा आक्रमण वगैरह हुआ था, फिर मदीना वो जीत के वापस मक्का में आ गए। जब मक्का जीत गए तो उन्होंने मोहम्मद ने सभी सारे जो कल्पित रूप थे, कल्पित रूपों की पूजा हो रही थी, सारे कल्पित रूपों को तोड़ दिए और सबको बोला किसी की पूजा मत करो। और फिर किस रूप की पूजा बोले, बोले किसी रूप की पूजा नहीं करनी, अल्लाह का रूप हमें पता नहीं है, तो आपको कोई भी कल्पित रूप की पूजा नहीं करनी है, और यहाँ तक कि आपको अल्लाह को किसी रूप में दिखाना भी नहीं है। और फिर क्या हो गया, सबसे मुसलमान लोगों ने क्या विचार किया कि वो जो मोहम्मद ने वहां के जो मूर्तियों को तोड़ा, उसका मतलब क्या है कि सब अगर रूप किसी मूर्ति में भगवान को दर्शाया जा रहा है तो वह कल्पित है, उसको तोड़ना चाहिए। और इसीलिए जब कोई भी मुस्लिम राजा थे हिंदू राजा को हराता था, तो सबसे पहले जाके करते थे मूर्तियों को तोड़ना। तो ऐसे नहीं है कि कुछ कट्टरवादी मुस्लिम ऐसे करते हैं, वास्तव में हर एक मुस्लिम समझता है कि ये मेरा कर्तव्य है कि क्योंकि मोहम्मद ने ऐसे किया है तो वो वहां पे जो मूर्तियों को तोड़ना चाहिए। तो ऐसे क्यों हुआ है, तो क्या होता है, हर एक धर्म का जो अनुयायी होता है उसको अहंकार होता है कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है। तो अगर मेरे धर्म में भगवान के, वैसे अगर कोई पुराण पढ़ता है, भगवद्गीता पढ़ता है, तो जिस प्रकार से भगवान का गुणगान जिन गुणों से, वो परम सत्य सर्वशक्तिशाली है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वज्ञानी है, और वो सब चीजों के आगे से अंत तक उसके शासन करने वाले, उसका पालन करने वाले हैं, वैसे वर्णन एक ही है, तो अल्लाह कृष्ण ही एक ही भगवान है। पर वो लोग तो हम भी समझते हैं कि अल्लाह कृष्ण कृष्ण जिहोवा बोलते एक ही भगवान है, पर वो क्या लोग क्या सोचते हैं कि अल्लाह एक ही भगवान है और बाकी सब जो है वो क्या है, भगवान नहीं है, वो कल्पित रूप है। और कल्पित रूप है इसलिए कल्पित रूपों की पूजा जो मोहम्मद ने बंद की तो हमें भी बंद करनी चाहिए। इस तरह से उनकी भ्रांत धारणा क्यों आई है, क्योंकि उनके शास्त्रों में भगवान के रूप का वर्णन है नहीं, तो इसीलिए कहीं भी किसी भी रूप में कुछ भी पूजा हो जाए तो सोचते हैं कि कल्पित रूप है और वो उसका खंडन करते हैं, उसको रोकने का प्रयास करते हैं। पर वास्तव में यह वैदिक शास्त्रों की अप्रतिम भेंट है। और भक्तिवेदांत ठाकुर कहते हैं स्क्रिप्चर्स आर नॉट द मोनोपोली ऑफ एनी ह्यूमन बींग और इवन एनी ग्रुप ऑफ पीपल। ये शास्त्र है केवल एक मानव के लिए या कुछ मानव के लिए नहीं, शास्त्र सब लोगों के लिए। तो सारे विश्व भर में जो प्रचार हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कृष्ण ये केवल कोई हिंदू भगवान नहीं है, वो सब लोग के भगवान है। तो जो हमारे कई मुसलमान लोग भी भक्त बन गए हैं, और अभी तो समझ जाते हैं कि कैसे मुस्लिम लोग कहता है, ऐरावत प्रभु नाम थे एक प्रभुपादी के शिष्य, और मुस्लिम थे बाद में भक्त बन गया, कि तो उन्होंने कुरान और भगवद्गीता के बहुत ग्रंथ लिखे हैं, तो भक्ति में कैसे आया बड़े रोचक है। तो क्या होता है कि कुरान में थोड़ा बहुत नैतिक नियम है, ऐसे करो ऐसे मत करो, पर जो तत्व ज्ञान है ज्यादा नहीं है। तो एक बार तो वो मुसलमान देश में उज्बेकिस्तान एक मुसलमान देश में उनका जन्म हुआ था, तो वो जब मद्रासा में जाते थे अल्लाह कुरान पढ़ने के लिए, तो एक बार वो बुद्धिमान थे और थोड़े स्केप्टिकल, थोड़ी शंकाएं भी थी उनके मन में, तो शंकाएं थी, तो उन्होंने क्या किया, तो मुल्ला प्रवचन दे रहा था, उसने कहा तुम कहते हो कि भगवान सब जगह, अल्लाह सब जगह पे है, तो क्या अल्लाह विश्वा में भी है। तो जब वो अल्लाह ने सुना इतना मोहित हो गया, बकवास क्या बोल रहे हो तुम ये। और तुम्हारा अगर कोई ऐसे कुछ ऐसा सवाल पूछता है, ऐसे कोई बात करता है जो उनको अच्छी लगती है, तो ये मुसलमान लोग खाते ही जाओगे, शैतान तुम्हारे मन में बैठ गया है, शैतान ने तुम्हारे दिमाग को खराब कर दिया है, दफा हो जाओ यहाँ, उसको निकाल दिया। जमाना चला गया और वो सबसे उन्होंने इस्लाम धर्म में त्याग दिया। तो बाद में बुद्धिमान थे तो अमेरिका में पढ़ाई करने चले गए, और बहुत बहुत लंबी कहानी है वो। पर एक बार वो एक पार्टी में गए थे, बुद्धिमान थे, और फिर पार्टी में गए थे एक बार, तो पार्टी में क्या हो गया था, तो सब ड्रिंक्स हो गए थे, तो थोड़ा ज्यादा ड्रिंक्स हो गए तो पार्टी में बेहोश हो गए। तो वो होटल के नीचे एक सेलर था, क्या बोलते हैं हमारे यहाँ पे बेसमेंट जैसे है, तो बेसमेंट में तो बाकी लोगों ने उनको डाल दिया। और वो सुबह उठ गए, चारों अंधकार था, और एक जगह पर थोड़ी देर रोशनी का किरण आ रहा था, और रोशनी का किरण आया था वो एक किताब पे गिरा, और किताब को देखा तो बड़ा सुंदर किताब लग रहा था। वो उठ के गए उधर और किताब को देखा, गॉड इज एवरीवेयर इवन इन स्टूल, वो टाइटल था, भगवान सब जगह पे है, खिस्टा में भी है। तो सारा नशा का प्रभाव चला गया और उन्होंने खोला, वो क्या था, एक बैक टू कॉलेज मैगजीन था जो अमर भगवत दर्शाई था, उससे बताया कैसे भगवान सर्वव्यापी है पर भगवान दिव्य है। अगर ये दिव्य है भगवान, इसलिए किसी भी भौतिक चीज का उन पर प्रभाव नहीं होता है। तो भगवान आते हैं तो वो कोई सुंदर कृष्ण के रूप में आ सकते हैं, और वही भगवान शुक्र रूप में भी आ सकते हैं। अब शुक्र बोले तो वो कोई बहुत ही मंगलमय प्राणी नहीं माना गया है, पर जब भगवान शुक्र रूप में आते हैं तो वो दिव्य है, और बड़े बड़े पर उनके गुणगान में संस्कृत श्लोक भी गाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान दिव्य है। तो जब उन्हें पढ़ा तो उनको अजब लगा, ये आश्चर्य की बात। उनको वो कई सालों से सवाल था, वो जवाब मिल गया, और फिर तुरंत वहां पर पास मेरा एड्रेस दिया, पास में मंदिर था, मंदिर में चले गए। तो मंदिर में गए तो सुबह का समय था, सब भगवान मंगल आरती के दौड़ रहे थे। आपसे कुछ सवाल है, सवाल बात नहीं, आप हमें सब। तो वो आए, उन्हें मंगल आरती में नाचे गाए, इतना अच्छा लगा, तो उसके आने कभी मंदिर से गए ही नहीं हो, फिर वो भक्त बन गए। तो अभी बड़े प्रचार है, तो उन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं, इसकी भावना और इस्लाम में कैसे वास्तव में समानता है, और इस्लाम में भक्ति का वर्णन है। तो चैतन्य महाप्रभु का दो बार मुसलमानों से बातचीत हुई, एक बार बंगाल में चांद काजी के साथ जो अंतिल्ला के 17वें अध्याय में आता है, और फिर दूसरी बार जब चैतन्य महाप्रभु उत्तर भारत के टूर में गए थे, जो वृंदावन जा रहे थे वो, तो तभी वो मध्यल्ला के 17वें 18वें अध्याय में आता है वर्णन, तभी वे कुछ पठान मुस्लिमों से मिले, और फिर वो पठान वैष्णव बन गए। तो तभी चैतन्य महाप्रभु जब बातचीत की है उसके आधार पर किताब लिखे हुए। तो वास्तव में भगवान के रूप का वर्णन है, कुरान में भी है, पर क्योंकि वो रूप का वर्णन नहीं है, रूप का उल्लेख है। उल्लेख मतलब आप अल्लाह की आंखें, अल्लाह के कान, पर उसका स्पष्ट वर्णन नहीं है, वो केवल वैदिक शास्त्रों में है। तो वास्तव में अगर हम वो बात की गहराई तक जाएंगे तो देखेंगे कि कुरान और भगवद गीता पुराने वैदिक शास्त्र में कोई विरोधाभास नहीं है, पर बाह्य रूप से देखेगा तो क्या है, बहुत विरोधाभास होता है। तो क्या हर धर्म में कुछ बाह्य चीज होते हैं और कुछ अंतरंग चीजें होती हैं। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गणित सिखाना चाहती है, तो वो बच्चा सीखना नहीं चाहता है, तो माँ को जानते तो वो बच्चे को आम बहुत अच्छे लगते हैं, तो माँ उसको तुमको आम चाहिए, आम चाहिए, ये कितने आम है, एक हाथ में दो, ये कितने आम है, तीन, तो कितने चाहिए, दोनों, सबके सब चाहिए होता है, तो कितने हैं दोनों, बोला बोलो मुझे, पांच, हाँ पांच। तो इस तरह से आम के माध्यम से माँ उसको बन सिखा। अभी दूसरा कोई बच्चा है वो उसको चिक्कू बहुत पसंद है, तो क्या करती है माँ उसको बन सिखाने, तो कितने चिक्कू है, चार, ये कितने चिक्कू है, पांच, कितने हुए, नौ। तो अगर कोई बाहर दूसरे देखेगा तो उसको क्या लगेगा, ये माँ और बच्चे क्या कर रहे हैं, आम खा रहे खिला रहे हैं, और ये माँ और बच्चे चिक्कू खा रहे खिला रहे, पर वास्तव में वो आम और चिक्कू की बात नहीं है, गणित की बात है। तो उद्देश्य एक है पर माध्यम अलग है। उद्देश्य क्या है, गणित सिखाना है, पर माध्यम क्या है, एक जगह पे आम का माध्यम इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरी जगह पे चीकू का माध्यम इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक उसी तरह से सभी धर्मों का उद्देश्य एक ही है कि भगवान के प्रति प्रेम जागरूक करना, पर जो माध्यम है वो अलग है। माध्यम अलग है मतलब क्या कि जैसे अभी हाँ वैदिक शास्त्र में अगर भगवान को प्रणाम करना है तो हम भगवान को प्रणाम करते हाथ जोड़, भगवान को आदर दिखाते, तो मुस्लिम धर्म में वो अल्लाह को नमाज करते तो हाथ ऊपर करते, क्रिश्चियन धर्म में माफ करते हैं तो वो हाथ दिलाते हैं। तो अगर बाहर रूप से देखेंगे तुम हाथ जोड़ रहे हो तुम हाथ ऊपर कर, अलग काम है, पर वो क्या है, वो माध्यम है और उद्देश्य क्या है कि भगवान के प्रति आदर दिखाना। तो इसीलिए आदर दिखाना ये एक समान उद्देश्य है पर माध्यम अलग अलग है। तो जो लोग बाहर दृष्टि देखते हैं वो देखते हैं कि अरे ये सब उल्टा ही है, ये सब अलग अलग है, तुम्हारा धर्म अलग है हमारा धर्म अलग है, और कुछ लोग इस धर्म को और व्यंग्यात्मक बना देते हैं, देखिए हिंदू उसे सब कुछ उल्टा ही करते हैं, बोलते हैं कि तुम मूर्तियों की पूजा करते हैं और वो मूर्तियों को तोड़ते हैं, तुम गाय की पूजा करते हैं वो गाय को मार के खाते हैं, तुम बाल इधर बढ़ाते हो वो बाल इधर बढ़ाते हो। तो ये जो भाई भाई फर्क है इस पे बहुत ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए, इस पे बहुत ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। तो एक बार या प्रभुपाद जी क्या अधिकांश रूप से उन्होंने यूरोप इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ऐसी जगह में प्रचार किया, भारत में भी क्या मुसलमान धर्म थोड़ा कट्टरवादी है जनरल, तो अभी भी अगर बहुत से भक्त है वो अभी बहुत से हिंदू लोग नौकरी के लिए सऊदी अरेबिया कुवैत ये सब जाते हैं और वहाँ पे भक्ति भी करते हैं, पर भक्ति वो मुसलमान धर्म मुसलमान राष्ट्रों में कोई भी और धर्म वो पब्लिकली नहीं पालन कर रहे थे, सिर्फ मुसलमान धर्म पब्लिकली होगा, बाकी सब कुछ करना है वो घर के अंदर करना है और घर के अंदर भी छिपके करना है, वो गैर कानूनी कहते हैं। तो प्रभुपाद जब एक ही बार गए थे ईरान में, तो ईरान में जब वो एक मुसलमान योग आया था उसको प्रचार किया उन्होंने, और प्रचार होने के बाद वो चले गए तो भक्तों से बात कर रहे थे आपको कैसे प्रचार करना चाहिए, तो फिर तभी पीछे जो होता है शहादा बोलते हैं, शहादा मतलब नमाज बोलते हैं, चालू हो गया क्या, तुरंत प्रभुपाद जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और हाथ जोड़ लिए, शांत सुनने लगे और पूरा शहादा उन्होंने सुन लिया, और फिर उन्होंने आंखें खोली, उनकी आंखें झूठे लगे थे, कितना सुंदर था वो, थोड़े भक्त थोड़े आश्चर्य हो गए। तो एक भक्त बोले प्रभुपाद जी क्या अच्छा नहीं होता कि वो ये अल्लाह पर बोलने के बजाय जगह हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, तो प्रभुपाद जी बोले कि तुम ये संकीर्णवादी क्यों बना रहे, संकीर्णवादी मतलब क्या, पक्षपाती, छोटे मन के क्यों बना रहे हैं, कि हम हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, वो अल्लाह पर बोले भगवान का गुणगान कर रहे हैं, भाव एक ही है, भाव एक क्या है, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तो मतलब क्या है कि हम एक पद्धति से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, दूसरे पद्धति से कर रहे हैं, तो हमें क्या देखना चाहिए कि भी भगवान का गुणगान करना है उसका आदर करना चाहिए। आप कई बार देख सकते हैं कि बहुत से मुस्लिम लोग होते हैं वो ट्रेन में भी हो गए, ट्रेन में अपना रग निकालते हैं और नमाज करते हैं, तो हमें देखिए क्या घुड़ा नहीं चाहिए, हमें देखिए कि हमें भी कितना नियमता से हमारा जप करना चाहिए। कई बार ब्राह्मण दीक्षित बस गायत्री भूल जाते हैं क्योंकि क्या होता है बिजी है बोलते हैं, पर ये मुसलमान लोग बड़ा अच्छे से नमाज करते हैं, तो हमें क्या देखना चाहिए कि वो भाव एक ही है पर माध्यम अलग है, तो अलग पद्धति करें, तो इसका मतलब नहीं है कि दोनों एक समान है, जो अल्लाह पर बोलने से शुद्धिकरण होगा और जो हरे कृष्ण महामंत्र शुद्धिकरण होगा क्या वो एक समान है, नहीं एक समान नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि हमारा शुद्धिकरण किससे होता है, किस मात्रा में हमारा भगवान का स्मरण हो रहा है। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो क्योंकि हम कृष्ण के रूप को जानते हैं, कृष्ण की लीलाओं को जानते हैं, तो इससे अधिक शुद्धिकरण होगा। तो प्रभुपाद जी जब अगर क्रिश्चियन लोगों को प्रचार करते थे तो दो पद्धति से प्रचार करते, अगर कोई सिर्फ नाम के वास्ते क्रिश्चियन होगा, नाम के वास्ते क्रिश्चियन मतलब क्या, तो क्रिश्चियन परिवार में जन्म हुआ है पर कभी चर्च जाता नहीं है, कुछ बाइबल पढ़ता नहीं है, तो प्रभुपाद जी उसको बोलते थे कि जो क्रिश्चियनिटी में बताया है और जो वैदिक शास्त्र में बताया एक ही है, पर जो वैदिक शास्त्र ने बताया है चैतन्य महाप्रभु की कृपा होने के कारण हरे कृष्ण महामंत्र बहुत शक्तिशाली और आप बहुत तेजी से प्रगति करोगे। तो the speciality of Krishna consciousness is that it helps us to achieve, it provides a process to achieve the goal with simplicity, rapidity and simplicity, rapidity and potency. Saralta, tez, kya hai? अभी अल्लाह अकबर बोल रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र बोले, दोनों से भगवान उनके प्रति प्रेम जागृत हो सकता है, पर हरे कृष्ण महामंत्र क्या विशेषता क्या है, सरल है, उससे प्रगति तेजी से होगी और ये मंत्र बहुत शक्तिशाली है, तो इसलिए अच्छा है। जब प्रभुपाद जी अगर कोई कुछ धर्म का पालन कर ही नहीं रहा होगा तो क्रिश्चियनिटी से नाम से है तो उसको बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र जल को, पर अगर कोई क्रिश्चियन पादरी है और वो क्रिश्चियनिटी का आदमी पालन कर रहा है तो प्रभुपाद जी बोला करते क्या हमको तुमको हिंदू नहीं बनाना चाहते, आप जीसस क्राइस्ट के आदेश का पालन चित्र करो, तो फिर वो क्रिश्चियन लोगों से क्या बोला करते, जीसस ने बोला है दाउ शैल नॉट किल, आपको मारना नहीं है, आप जानवर को मार के तो खा रहे हैं। तो मतलब क्या यहाँ पे कहने का कि अगर कोई किसी और धर्म का पालन चित्र से कर रहा है तो उसका हमें उसकी श्रद्धा को ह्रास करने की जरूरत नहीं है, श्रद्धा को उद्वस्त करने की जरूरत नहीं है, तो उसको हमें आदर करना चाहिए, उसको और प्रेरणा चाहिए तो मच्छर से पालन करो, पर उसके विपरीत अगर कोई कुछ पालन कर ही नहीं रहा है उसके बाद चुनाव है, अभी क्या अभी कुछ वो क्रिश्चियनिटी का पालन करे तो वैदिक शास्त्र का पालन करे, तो वैदिक शास्त्र का पालन करेगा तो और तेजी से प्रगति होगी। तो इसीलिए जो हमारी वैदिक संस्कृति है बड़ी बड़े उदार चित्त है, और फिर भी समझना चाहिए कि हमारी जो उदार चित्तता है वह दूसरे धर्मों में नहीं है, दूसरे धर्म में बता रहा था मैं कि वो विग्रहों को भगवान का रूप नहीं मानते, वो क्या सोचते हैं कि ये वास्तव में कहते हैं कि ये भगवान के कल्पित रूप है, ये भगवान से प्रतियोगिता कर रहे हैं, जो पूजा भगवान की होनी चाहिए ये जो रूप उनकी पूजा ले रहे हैं, तो वो क्या सोचते हैं कि जो भगवान से प्रतियोगिता करता है, जो भगवान का प्रतिस्पर्धी है वो कौन है, शैतान है। इसलिए वो क्या ओम की क्या धारणा होती है कि अगर ये जो विग्रहों की पूजा हो रही है वो सोचते हैं कि ये शैतान की पूजा है, शैतान की पूजा है, इसलिए शैतान की पूजा बंद करनी चाहिए। तो आप देखते हैं कई बार जो क्रिश्चियन होते हैं वो प्रसाद नहीं लेते, तो प्रसाद क्यों नहीं लेते वो बताएगा नहीं हमको, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये शैतान की पूजा का फल है, स्वीकार नहीं करना चाहिए, तो उनका भाव ये होता है। तो ये संकीर्णवाद है, तो हमें भी संकीर्णवाद नहीं बनना चाहिए, तुम शैतान की पूजा कर रहे नहीं बोलना चाहिए, हमें हमारे आचार्य से बताया था कि उदास है वो देखेंगे, पर फिर भी हमें जानकारी होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। जैसे आप जानते हैं अभी और अभी जो वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर है, तो बांके बिहारी मंदिर में क्या होता है वो आतंकवादियों ने आक्रमण करने की धमकी दी, तो फिर पूरे ऑल्टर को उन्होंने क्या बुलेट प्रूफिंग कर दिया, तो ऑल्टर के और लोगों के बीच में एक बुलेट प्रूफ कांच, तो क्यों हम अंधे नहीं सकते कि सब कुछ चल रहा है, अगर खतरा है तो खतरा है, जैसे हमारे आचार्यों ने भी विग्रहों के संरक्षण के लिए इतना प्रयास किया तो हमें भी करना चाहिए। पर महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमें किसी भी धर्म के प्रति नफरत नहीं होनी चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब धर्म भगवान ने दिए हैं, पर उनके जो अनुयायी हैं अभी वो संकीर्णवादी होने के कारण, वो कट्टरवादी होने के कारण कभी कभी हिंसा कर सकते, तो विग्रहों की पूजा जो है वो अगर कोई बोलेगा कि ये विग्रह है ये क्या है पत्थर है आप पत्थर की पूजा क्यों कर रहे हो, तो जो एक ताकत हिंदू नेता थे और उनके पिताजी ने उनको बोला कि शिवरात्रि के समय रात भर आप शिवलिंग का दर्शन करो, तो बैठे शिवलिंग का दर्शन करने रात को उन्होंने देखा क्या कि शिवलिंग के ऊपर से चूहा जा रहा था, और फिर उन्होंने अपने किताब में लिखा कभी भी साक्षात्कार हो गया कि ये शिवलिंग में कोई भगवान नहीं है, अगर ये भगवान के ऊपर से ये शिवलिंग के ऊपर चूहा जा सकता है तो कहां उसमें भगवान है, उन्होंने तब से तो उन्होंने क्या वो उस साक्षात नेता ने क्या देखिए कोई विग्रह पूजा खंडन कर दिया और फिर संस्था बनाई, वो कहते हैं कि विग्रह पूजा सब काल्पनिक है, पर हमें समझना चाहिए जब भगवान प्रकट होते हैं भौतिक जगत में तो अभी विग्रह के रूप में प्रकट हुए हैं, वो किस लिए प्रकट हुए हैं, वो कैसे मैं सर्वशक्तिशाली हूं ये दिखाने के लिए प्रकट नहीं हुए भगवान, भगवान कैसे मैं सर्वशक्तिशाली हूं ये वो दिखाते काल रूप में, काल रूप में कोई कितना भी शक्तिशाली हो उसको खत्म कर, कोई अलेक्जेंडर हो कोई मोहम्मद बिन तुगलक हो कोई औरंगजेब हो कोई भी हो सबको भगवान खत्म कर, काल रूप में वो आते हैं तभी अपनी सर्वशक्तिमत्ता दिखाते हैं, पर वो विग्रह रूप में आते क्यों हैं? अपनी सर्वशक्तिमत्ता दिखाने नहीं आते, वो अपनी करुणा दिखाने आते हैं। अपनी करुणा दिखाने मतलब, क्योंकि हमारी भौतिक चेतना है, हमारी भौतिक दृष्टि है, तो हम भगवान को देख नहीं सकते। यदि हम भगवान को देख नहीं सकते तो फिर हम भगवान की पूजा कैसे करेंगे, भगवान से प्रेम कैसे जागरूक करेंगे? तो इसीलिए भगवान हमारे दृष्टि में प्रकट होते हैं। तो जो पिलाई लोकाचार्य है, दृष्टि वैष्णव आचार्य, उदाहरण देते हैं कि छोटा बालक है, छोटा नन्ना बालक है, वो जो हाथी है, हाथी के सिर को स्पर्श करना चाहता है, तो क्या उसके लिए संभव है? छोटा सा बालक है, हाथी उतना ऊंचा, कितना भी हाथ ऊपर करे हाथी के सिर तक पहुंच नहीं सकता है अपने प्रयास, तो फिर कैसे संभव है? कहते हैं अगर हाथी खोज नीचे जाए, हाथी नीचे बैठ जाता है, अपना सिर नीचे करता है, तो क्या होता है? फिर वो उसके सिर को हाथ लगाता है। तो ऐसे होता है कि जो जीवात्मा है वो छोटे बालक के समान है और वो भगवान का दर्शन करना चाहता है, पर भगवान आध्यात्मिक है, जीवात्मा भौतिक है, इतना छोटा है, कैसे कर सकता है? अपने प्रयास से नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान स्वयं छुपते हैं, भगवान स्वयं आते हैं विग्रह के रूप में। तो विग्रह जब आते हैं भगवान विग्रह के रूप में, तो वो खुद की सर्वशक्तिमत्ता दिखाने के लिए नहीं आए हैं, वो हमें सेवा का मौका देने के लिए आए हैं। तो भगवान इस भौतिक जगत में अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं, प्रसाद के रूप में प्रकट होते हैं, भगवीता के रूप में प्रकट होते हैं, हरिनाम के रूप में प्रकट होते हैं। तो जब भी भगवान आते हैं तो कोई कहेगा कि ये भगवदगीता क्या, एक किताब है, भगवदगीता लो या कोई गणित की किताब लो, वो सबका उसका भी वजन उतना ही है, उसका भी आकार एक है, पर भगवदगीता का फर्क अगर समझना है तो क्या हमें बुद्धि से समझना पड़ेगा। बुद्ध सेवा में भाव से, श्रद्धा से, भक्ति से हम पढ़ते हैं भगवदगीता को, ये ज्ञान बड़ा दिव्य है। ठीक उसी तरह से अगर विग्रह कैसे दिव्य है समझना है तो हमें सेवा भाव से भगवान की ओर जाना चाहिए। कोई कहते हैं नहीं नहीं ये सब कल्पना है, तो अभी जो मुसलमान लोग हैं वो भी अपने कुरान को बड़े संभाल के रखते हैं, तो वो उनके घर में कोई भी चित्र नहीं करने चाहिए, तो फिर क्या करते हैं वो मानव कोई किसी मानव या जानवर का चित्र नहीं करते, वो कुछ पेड़ों पौधों के फलों की फूलों की चित्र करते हैं, कुरान को बड़े संभाल के रखते हैं। तो अगर कुरान वो कहते हैं कि ये अल्लाह के ही शब्द है और वास्तव में अल्लाह ने दिए है, ये बड़े दिव्य है, तो वो कहते हैं ये दिव्य है, पर क्या कोई कुरान को फाड़ नहीं सकता है? कुरान को फाड़ सकता है, जला सकता है, संभव है या नहीं है? संभव है। तो कोई कुरान को फाड़ के जला दिया, तो मैंने इसको जला दिया मतलब कुरान कुछ दिव्य नहीं है, साधारण किताब है, ये मूर्खता है संसार। तो कुरान की दिव्यता आकर समझते हैं, उसको फाड़ सकते हैं कि ये देख के नहीं है, कुरान की दिव्यता का समझता है, जब उसको पढ़ेगा कोई, अगर मुसलमान लोगों को हम बोलेंगे कि कोई भी तुम्हारे कुरान को फाड़ दे, कहते ये अल्लाह का शब्द है, ये अल्लाह का शब्द था तो फटक फटता नहीं था, जलता नहीं था। वो बताए कि अगर आप कोई अल्लाह का शब्द कैसे ही समझना है उसको आप पढ़ो, ये फाड़ने जलाने का बात नहीं है। ठीक इस तरह से अगर वो बोलते हैं कि ये विग्रह कैसे विग्रह है, ये उसके उसको हलते नहीं है, चलते नहीं है, कुछ नहीं करते हैं, नहीं वो कैसे हलते चलते आपको समझना है तो आप भक्तिभाव से सेवा करो। तो जो सेवा होती है क्या होते हैं, भगवान जब हिरण्यकशिपु चुनौती दे रहा था, भगवान कहाँ है कहाँ है, हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु में सारे ब्रह्मांड में भ्रमण किया, विष्णु चुनौती दे, विष्णु कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो, भगवान ने कुछ परवाह नहीं की। पर जब प्रहलाद महाराज ने बताया कि मेरे भगवान यहाँ पे है, तुरंत भगवान वहां से प्रकट हुए। तो भगवान क्यों प्रकट हुए? हिरण्यकशिपु चुनौती के कारण प्रकट नहीं हुए, प्रहलाद के प्रेम से प्रकट हुए। ठीक उस तरह से भगवान विग्रह में कैसे प्रकट होते हैं, तो भक्त की सेवा से प्रकट होते हैं। कोई नास्तिक के चुनौती से कहीं प्रकट नहीं होते हैं, कोई नास्तिक अगर विग्रह के अपराध करना चाहता है तो फिर भगवान बोलते हैं ठीक है तुम अपराध कर लो, तुम्हारी नास्तिकता को तुम और बढ़ा लो, तुम पाप करोगे तुम्हें और उसका दुख भुगतना पड़ेगा, अगर तुम नास्तिक बने रहना चाहते हो नास्तिक बने रहो, और अगर हम कोई मंदिर में जाते हैं, कोई विग्रह में देखते हैं कि इतने विग्रह के सर पर कुछ मक्खी है, कुछ चींटी है, तो हमें क्या सोचना चाहिए? अरे ये विग्रह कैसे है, भगवान है, हमें सोचना चाहिए कि ये भगवान को मैंने हमने सेवा के लिए बुलाया है और हम भगवान की अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर रहे हैं, हमें और स्वच्छता रखनी चाहिए, हमें और आदरपूर्वक सेवा करनी चाहिए। तो भगवान हमारे भगवान विग्रह के रूप में आए हैं हमें सेवा का मौका प्रदान करने के लिए। और अगर हम माधवेंद्रपुरी की कहानी देखते हैं तो माधवेंद्रपुरी की कहानी में क्या होता है,
भगवान वास्तव में किस लिए आते हैं? माधवेंद्रपुरी छोटा इच्छा करते हैं कि मुझे खीर खाने को मिलेगी तो कितना अच्छा होगा।
अच्छा क्या होगा, मुझे स्वादिष्ट जीवा को स्वादिष्ट व्यंजन मिलेगा ऐसा नहीं है, मुझे अगर ये खाने को मिलेगा मैं समझूंगा ये खीर कैसे बनाई है, फिर मैं मेरे गोपाल जी के लिए खीर बनाया।
तो उन्होंने इतनी सी इच्छा की, अभी छोटी सी इच्छा है, पर भगवान गोपीनाथ जी थे वो जो मुझे ये इच्छा पूरी करनी है,
मेरे भक्त की इच्छा मुझे पूरी करनी है। तो जो था कथित हिलते नहीं है, चलते नहीं है, बोलते नहीं है, ऐसे भगवान ने क्या किया, वो खीर का जो बक्सा था चुरा लिया, खीर का बक्सा चुरा लिया। क्यों चुरा लिया? और क्या, अपने भक्त की इच्छा पूरी करनी है। तो जो तत्व है समझना है विग्रह तत्व, तो ये श्लोक कौन सा है? ये यथा माम प्रपत्यंते ताम तथैव भजामि। इस श्लोक का समझना बहुत जरूरी है कि जैसे जिस भाव से हम भगवान की ओर जाएंगे उसी भाव से भगवान प्रकट होंगे।
जो बहुत ही बड़े लोग कहते हैं क्या आप पत्थर की पूजा कर रहे हो,
वास्तव में वो क्या कर रहे हैं, वो हार मास की पूजा कर रहे हैं। हार मास की पूजा कर रहे हैं मतलब उनके घर में जाओगे तो कोई फिल्म स्टार का फोटो होगा, कोई हीरोइन का फोटो होगा, वो क्या है, केवल एक हड्डी पसली का एक शरीर है, कुछ उसको पूजा कर रहे हैं। आप कभी कभी कुछ पिक्चर में देखते हैं कोई लड़का कोई हीरो होता है वो चल रहा होता है रस्ते से, उसको एक रुमाल दिखता है और रुमाल उठा लेता है, फिर रुमाल देख के कल्पना करने लगता है कोई स्त्री का रुमाल होगा, वो स्त्री कितनी सुंदर होगी, और फिर गाना गाया जाता है तुम्हारा रुमाल, और फिर इतना कमल बना करता है। तो वास्तव में रुमाल में सब नाक की गंदगी होगी, पर वो वहां पे कल्पना कर रहा है। तो क्या है कि हमारी जब भौतिक चेतना होगी तो हम जो भौतिक रूप है उसको कुछ बहुत दुर्लभ मानते हैं, और जो दिव्य दुर्लभ रूप है उसको पत्थर मानते हैं। तो यह या निशा सर्वभूताना सत्यम जागृतियम, कि वास्तव में जो इंद्रियों की दृष्टि का व्यक्ति है और जो आत्मज्ञानी है उनकी दृष्टि पूरी अलग होती है। तो जो विग्रह पूजा है उसको अगर हमें समझना है तो सेवा भाव से। प्रभुपाद जी जब उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में द्वारकाधीश का मंदिर बनाया लॉस एंजल्स में, रुक्मिणी द्वारकाधीश, तो उसको तो अमेरिका में सबसे शाही विग्रह था, सबसे बहुत सुंदर विग्रह था, बहुत बड़ा मंदिर था। फिर प्रभुपाद जी ने प्रवचन दिया, प्रभुपाद जी बोले कि अगर आप इसको पत्थर समझते हो तो सनातन काल तक ये पत्थर बना रहेगा, पर अगर आप इनको भगवान समझते हो और भगवान के रूप में सेवा करते हो, इनकी प्रार्थना करते हो, पूजा करते हो, तो यही विग्रह ये विग्रह आपसे बात करें, ये यथा माम प्रपत्ति से काम भाई को बचा। तो इसीलिए जो विग्रह की पूजा है ये बहुत बहुत दिव्य भेंट है भगवान की, कि उससे क्या कर सकते हैं, अगर हम बाग दीक्षा हो जाते हैं ब्राह्मण से बचे तो हम भगवान को स्पर्श कर सकते हैं, भगवान को ट्रेस कर सकते हैं, भगवान को स्नान करा सकते हैं। जो व्यक्तिगत संबंध है भगवान से वो प्रस्थापित करने के लिए विग्रह बहुत सुंदर है। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि जिन धर्मों में विग्रह पूजा नहीं है वो धर्म अधिकांश रूप से भौतिकवादी रहते हैं। और सत्य वो कहते हैं कि क्या होता है, अगर आप देखेंगे इस्लाम वो कट्टरवादी है, भौतिकवादी बहुत है, ये पैसा और शक्ति और शिक्षा लगे थे। क्रिश्चियन धर्म में वो विग्रह पूजा नहीं करते, तो क्या होता है, भौतिकवाद बहुत होता है उन लोगों। तो क्या है कि दिव्य रूप भगवान का नहीं है, दर्शन नहीं है, तो क्या होता है, दिव्य भक्ति जागरूक होना मुश्किल होता है। तो फिर लोग भौतिक स्तर पर रहते हैं और फिर भौतिक संपत्ति, भौतिक शक्ति, भौतिक सुख के पीछे जाते हैं, वही धर्म के नाम में करते रहते हैं। तो इसका सवाल है मुझे विग्रह पूजा करने के सुकून
अल्लाह शब्द का मीनिंग,
अल्लाह शब्द का अर्थ है ऑल माइटी, सर्वश्रेष्ठ। तो जैसे है जो अलग अलग शब्द जो है वो वास्तव भगवान के ही नाम है, जिहोवा जो है सर्व कृपालु, इस तरह से ये जो नाम है ये भगवान के ही नाम है, वही परम सत्य के नाम है। अलग अलग भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं कि वही भगवान, चैतन्य शिक्षामृत नाम का ग्रंथ है सुंदर, उसमें बोलते हैं कि वही भगवान अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग पद्धति से प्रदर्शित होते हैं और उनको अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। अपना जो कर रहा हूँ कि उसमें क्या होता है, तो क्या हुआ कि जो तो जो अगर मस्जिद में जाओगे तो मस्जिद में कुछ भी नहीं होता है, मस्जिद में सिर्फ एक जगह में दिशा होती है, यहाँ पे दिखाते हैं कि मैं काफी दिशा में, उस दिशा में सिग्नल होता है और वो दिशा में खड़े रह के जो उनका बुल्ला है कुछ बोलता है, फिर शहादा बोलता है जिससे कि सब दोहराते हैं। जो दरगाह है वो वास्तव में जो मुस्लिम धर्म में सूफी नाम के लोग थे, सूफी संघ जो थे वो जो हिंदू धर्म जो भक्त थे उससे बहुत प्रभावित हुए कुछ मुस्लिम, और जब ये भक्तों में इतना प्रेम है और वो हमें भी प्रेम जागरूक करना है, तो उन्होंने जो तारीख नाम का था, तारीख मतलब वो सब मुस्लिम लोग आते थे और वो अल्लाह के बारे में गीत गाते थे, अल्लाह के बारे में स्मरण करते थे, प्रार्थना करते थे। जो सूफी लोग थे वो वास्तव में थोड़ा मुस्लिम और हिंदू लोगों का समन्वय है उनमें, और फिर जैसे हम श्री शास्त्र में महान संतों की समाधि की जाती है, वैसे वो जो सूफी संतों थे संते उनकी वो दगा करने लग गए। पर जो अनेक मुस्लिम हैं, मुस्लिम में सुन्नी और शिया नाम के दो विभाग होते हैं, तो सुन्नी मुस्लिम तो जो मुस्लिम सुन्नी जो होते हैं वो कहते हैं इस प्रकार दरगाह बनाना ये अल्लाह के प्रति अपराध है, और इसीलिए अभी अफगानिस्तान में बहुत से दरगाह थे, सब दरगाह उन्होंने तोड़ दिए। तो वास्तव में मुस्लिम धर्म बहुत उनका अंतर झगड़े में चल रहे थे, तो पर वो क्या है वो थोड़ा हिंदू धर्म के प्रभाव के कारण वो भी समझ गए कि जो महान प्रगतिशील भक्त है उनको भी आदर देना चाहिए। कि ये श्लोक के वजन है, वैसे भगवान का कोई काया नहीं है, अकायम
अशरीरधारी
अश्नाविरम बिना नाड़ियों के, शुक्रम मतलब सर्वशक्तिमान। तो हर एक अनुच्छेद तो इसका वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि वे सब सर्वशक्तिमान हैं, तो इसीलिए भगवान भले ही पत्थर के रूप में आए पर वो पत्थर को त्रिविध तो बना सकते हैं। जब जो विग्रह है वो पत्थर से भले ही बने हैं, वो पत्थर नहीं है, जो भगवान पत्थर हो जाए तो वो सिद्धांत तो प्रभाव हो जाते हैं। और फिर जैसे हम इच्छा करते हैं उसके अनुसार भगवान हमें फल देते हैं। तो कोई इच्छा करता है कि ईश्वर जाना है तो स्वर जाना देंगे, कोई मुक्ति चाहता है मुक्ति देते हैं, कोई भक्ति चाहता है भक्ति देते हैं, सबकी इच्छा भगवान पूरी करते हैं, यथार्थ तो अर्थान शाश्वत समान है। और फिर रूपा जी यहाँ पे पहली बार कृष्ण के बारे में उल्लेख करते हैं और कृष्ण की रासलीला के बारे में बोलते हैं यहाँ पे। तो अगर आप ईशोपनिषद पढ़ोगे तो ईशोपनिषद में प्रभुपाद जी भगवान गॉड जो इंग्लिश में वो शब्द इस्तेमाल करते जा रहा और कृष्ण शब्द इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि जो ये ईशोपनिषद प्रभुपाद जी खास करके जो निर्विशेष वाले लोग हैं उनके लिए लिखा हुआ है, इसलिए उनको कृष्ण सत्य ये तो भक्तों का एक भगवान है, हम परम सत्य ब्रह्मन के जाने लगते हैं, तो उनकी भाषा प्रभुपाद जी ने इस्तेमाल की है। पर धीरे धीरे वो भगवान के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पे भगवान कैसे लीला करते हैं उसके बारे में वर्णन करते हैं। तो इन तात्पर्य प्रभुपाद जी रासलीला का उल्लेख करते हैं और कहते हैं अवर्णम, अवर्णम मतलब कोई भगवान की निंदा नहीं कर सकता है। तो प्रभुपाद जी माखन चोरी करते हैं, भगवान जी माखन चोरी करते हैं, जब माखन चोरी करते हैं तो
क्यों करते हैं? वो केवल अपने भक्तों का प्रेम बढ़ाने के लिए करते हैं।
तो वास्तव में वो कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि जब यशोदा माई को उन्होंने विश्वरूप दिखाया तो सारा विश्व उनके मुंह के अंदर था। तो सारा विश्व उनके मुंह के अंदर है तो जो विश्व में माखन है वो भी उनके मुंह के अंदर ही है। तो फिर उनको भाई माखन चोरी करके माखन लाके अपने मुंह में डालने की क्या जरूरत है? सब उनके अंदर, सब कुछ उनके मुंह के अंदर ही है। और वो क्यों करते हैं ऐसे? क्योंकि दिखाना, वो अपने भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं। तो जो माँ होती है वो अपने बालक अगर नटखट्टा करता है तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो सब जो अगर कोई दो तीन माँ होती है तो वो देखते मेरे बेटे ने ऐसे किया, मेरे बेटे ने ऐसे किया, उसे पाते करते रहते, उनको बड़ा आनंद मिलता है। तो जो वात्सल्य रस में भक्त है उनको आनंद देने के लिए, आनंद देने के लिए भगवान ऐसी भूमिका करते हैं। जो बाल मुकुंद स्तोत्र है उसमें मार्कंडेय ऋषि बताते हैं इस तरह से,
बहिर्गतायां प्रजनायिकायां शिखे दयत्यपयोदधी भुक्त्वा यथेष्टं कपटेन सुप्तं बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। शिखे हृदयस्य
अलग अलग निधि, अलग अलग बर्तनों में यशोदा माई पयोदधी दही और दूध रखती है। तो पहिर कटाया वो बाहर चली जाती है, वो कृष्ण को सुलाती है, लोरी सुनाती है, माथा उनके माथ स्तनपान करते हैं, सो जाते हैं। सो गए हैं वो सोचती है तो बाहर कुछ काम कर जाते हैं। जैसे वो सो, जैसे वो बाहर चले जाते हैं तो शुद्ध आंखें खोलते हैं, उठते दौड़ते हैं माखन माखन के डब्बों के, और फिर
भुक्त्वा यथेष्टं जितना इच्छा है पूरा खा लेते हैं,
और फिर कपटेन सुप्तं सो जाते हैं कपट में। और फिर यशोदा माई आती है,
कृष्ण माखन से सारा खाना खत्म हो गया, खा रहे माखन,
कृष्णा तुमने खाया माखन,
कृष्णा सोए हुए तुमने माखन खाया, मैया मुझे भूख लगी है।
तो वो अपनी आंखें मूंदते हुए उठते हैं,
तुमने माखन खाया? तो अभी उठा, ये पता ही नहीं मुझे भूख लगी है, मुझे माखन दो,
किसने खाया है माखन? तो वास्तव में इस तरह से भगवान अनेक लीलाएं करते हैं। वो क्यों लीला करते हैं?
सिर्फ प्रेम के आदान प्रदान के।
ऐसे भगवान जब माखन चोरी करते हैं तो कोई गुनाह नहीं। ठीक उस तरह से भगवान जब गोपियों के साथ लीला करते हैं तो वो भी वो नाचते हैं गाते हैं, तो वो भी लोग कहते हैं कि भगवान किसी नौजवान से क्यों नाचते हैं, कैसे भगवान है? तो वास्तव में सबसे पहले ये समझना चाहिए कि भगवान का स्तर हमें समझना चाहिए, फिर उनके कार्य को देखना चाहिए। भगवान का स्तर मतलब व्यक्ति कौन है, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वता, तत्व समझना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई अनपढ़ आदिवासी है और उसको ऑपरेशन सर्जरी क्या है ये पता ही नहीं, उसे नहीं पता है, डॉक्टर ऑपरेशन करता है, पेट को फाड़ता है, फिटिंग करता है, उसको पता ही नहीं है। और फिर वो पहली बार शहर में आता है, वो जाता है एक अस्पताल में और देखता है अच्छा खासा व्यक्ति है, डॉक्टर के पास गया और ऑपरेशन थिएटर बाहर देखता है, वो जो डॉक्टर है चाकू निकालता है फाड़ता है, फिर क्या कर रहे, मार रहे हो तो मार रहे हो, मार रहे हो, रोको उसको, रोको उसको, रोको, और चाची पे जला, रोको उसको, रोको उसको, वो सारे चुप बैठो तुम। बाद में उसके रिश्तेदार हो जाता है, अरे ये तुम्हारे आदमी को मार रहा था, ये तुम्हारे आदमी को मार रहा था। डॉक्टर को क्या करते हैं, इसको कुछ ध्यान नहीं देता, वो क्या करते हैं लोग, या कुछ डॉक्टर को पैसे देते हैं, तो दिमाग खराब हो गया क्या? सब लोग तुम्हारा दिमाग खराब हो, चुप बैठो।
तो क्या है कि व्यक्ति के कार्य को देखने के पहले उसके स्तर को समझना है।
अगर जो ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर है, डॉक्टर का स्तर नहीं पता है तो उसे कार्य देख के व्यक्ति पूरा गुमराह हो सकता है, और खामखा गलत इंसान लगाता है डॉक्टर पे। डॉक्टर तो उसके मरीज को ठीक कर रहा है पर बोल रहा है कि डॉक्टर ये आक्रमण कर रहा है, मार रहा है उसे। तो क्या सबसे पहले स्तर समझना है फिर कार्य। ठीक उस तरह से अगर हमें भगवान कृष्ण की लीलाओं को समझना है तो लीलाओं को समझने के पहले सबसे पहले स्तर देखना है।
तो लोग आते हैं और लोग कहते हैं कि भगवान का
भगवत गीता को कुछ पढ़ते नहीं। प्रभुपाद जी को एक बार, स्वामी जी रासलीला के बारे में आप बताओ हमको। प्रभुपाद जी बोले, भगवान ने भगवदगीता पहले बताइए, पहले कुरुक्षेत्र लीला बाद में रामलीला, पहले आप भगवदगीता समझे। तो क्यों भगवदगीता समझो? क्योंकि भगवदगीता से हम भगवान का सबको समझते हैं। तो फिर ये भगवान रात को अकेले बांसुरी बजाते हैं, गोपी से नाचते हैं, ये कैसे कार्य कर रहे हैं, कैसे आप ऐसे व्यक्ति को कैसे भगवान मान सकते हो? नहीं, सबसे पहले आप समझो कि ये जो व्यक्ति है परम पुरुषोत्तम भगवान है, सबके स्रोत है। वो गोपिया है, गोपियों के बच्चे, जो गोपियों के माता पिता है, गोपियों के भाई बहन है, वो गोपिया स्वयं, वो सब उनके पुत्र है, सब उनके संतान है। और वास्तव में उनका जो संबंध है पुत्र से दिव्य है। हम जानते हैं कि रामलीला में जब बहुत से ऋषि मुनि थे, उन्होंने जब देखा कि सीता और राम का कितना कितना सुंदर संबंध था माधुर रस में, तो उनको भी इच्छा है माधुर रस में भगवान की सेवा करने की। तो फिर श्री रामचंद्र ने कहा कि मैं एक पति वध किया है, तो अगले जन्म में मैं तुम्हारा तुम्हारी सेवा स्वीकार करूंगा माधुर्य रस में। तो सारे ऋषि गण थे, फिर वो उन्होंने स्वीकार किया, फिर तपस्या किया, फिर अगले जन्म में वो गोपिया बन गए। तो अगर हम जब भगवान को गोपियों के साथ उससे करते देखते हैं, किसी को लगता है कि ये गलत है, तो उसको बोलो कि आप वहां पे गोपियों का चित्रण छोड़ के आप ऋषि मुनियों का चित्रण करो। वहां पे भगवान के साथ ऋषि मुनि है, लंबी दाढ़ियां है, तो कुर्ता पहनकर नाच रहे, कुछ गलत लगता है तुमको? अरे तो वास्तव में भगवान हृदय की भक्ति को देखते हैं, हम शरीर को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये भगवान और गोपियों को देखते हैं, तो आप सोचते हैं ये लड़का लड़की, हमें समझते कि ये भगवान और भक्त है। तो फिर भगवान के लिए जब प्रभु श्री रामचंद्र जब हनुमान की बड़ी सेवा करके आते हैं, लंका से आते हैं, तो प्रभु श्री रामचंद्र बहुत प्रसन्न होकर वो हनुमान जी को आलिंगन करते हैं। तो भगवान अगर हनुमान जी से आलिंगन करते हैं या राधा रानी से आलिंगन करते हैं, भगवान के लिए एक ही है, क्योंकि वे भक्त से प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। पर हमारे लिए क्या है, हम वो भक्त नहीं देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, ये पुरुष है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें तत्व समझना चाहिए, तत्व समझेंगे उसके बाद में हम लीला को समझते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते अपापविद्धम, भगवान भले ऐसे कार्य करे जो साधारण दूसरे पाप है। कोई एक पुरुष है, वो किसी और स्त्री को बुलाता है, उसे रात में नृत्य करता है, बहुत से लोग हैं वो भगवान की रासलीला का अनुकरण करते हैं। लोग कहते हैं कि मैं भगवान और तुम मेरी गोपिया, हम नृत्य करते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते थे ये रासलीला नहीं है, ये रास्कल लीला है, रास्कल लीला है, मतलब क्या, ये बदमाशी का कार्य है, भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते हम। कोई कहता है मैं रासलीला करना चाहता हूँ, जरूर करो रासलीला, सबसे पहले गोवर्धन लीला करो। भगवान जी 7 साल के थे तो गोवर्धन उठाया, फिर 8 साल में उन्होंने रासलीला की, तो पहले गोवर्धन उठा, वो अपने एक उंगली से टेबल भी नहीं उठा पाए, कहाँ गोवर्धन उठाएंगे। इसीलिए भगवान जैसे दिव्य है, इसलिए वो किसी भी पाप से स्पर्श नहीं होते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि कैसे जो सूरज होता है, अगर कोई व्यक्ति पेशाब करता है तो जगह गंदी हो जाती है, पर उससे वो जो सूरज गंदा नहीं होता, सूरज की रोशनी वहां पर स्पर्श होगी, तो वास्तव में सूरज की रोशनी से वो जगह जो है स्वच्छ हो जाती है। तो वैसे कोई भी कार्य से भगवान दूषित नहीं होते, भगवान से शुद्ध है और दूसरों को भी शुद्ध करते हैं। तो भागवत में सरल उदाहरण दिया गया है, वो कहते हैं कि ये कृष्ण के नाम का स्मरण करके लाखों लाखों लोग काम वासना से मुक्त होते हैं। काम वासना पहचान करते हैं, कृष्ण 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 बोलते हैं तो उसे काम मुक्त हो जाती है। कृष्ण का नाम बोल के लोग काम वासना से मुक्त हो जाते हैं, तो वो स्वयं कृष्ण काम वासना के अधीन कैसे हो सकते हैं? सरल प्रश्न है। जो व्यक्ति जो काम वासना से मुक्त करता है, जिसका नाम ही जो काम वासना से मुक्त करता है, वह व्यक्ति कामी कैसे हो सकता है? इस तरह से यह अपापविद्धम, तो भगवान पवित्र है और हमेशा पवित्र करते हैं। तो भगवान जैसे कोई दवाई होती है, तो दवाइयां दो प्रकार की होती है। एक होते हैं कि अगर हम कुछ बीमारी हो गई है अभी, तो अगर कोई हाथ कट गया है तो फिर उसको एंटीसेप्टिक बोलते हैं, मतलब वहां पे जंतु है वो बढ़े नहीं, जंतु है पर बढ़े नहीं, उनको ठीक कर दें। और दूसरी है प्रोफिलैक्टिक, मतलब क्या कि आपको बीमारी हो ही नहीं, डॉक्टर बोलते हैं अभी यहाँ पे सर मलेरिया का वातावरण है, तो आप ये दवाई ले लो जिससे कि आपको बीमारी होगी नहीं। तो भगवान का नाम दोनों कार्य करता है। भगवान नाम क्या कार्य करता है कि अगर हमें पहले से कुछ काम वासना है तो वो जो बीमारी है उसको ठीक कर देगा, और बहुत से वासनाएं आ सकते हैं, उन वासनाओं से हमको बचा लेगा। तो भगवान का नाम दोनों करता है, जिस तरह से भगवान का नाम बड़ा दिव्य है। तो यह है आठवें श्लोक के बारे में चर्चा। और किसी को कोई सवाल है इसके बारे में? शालिग्राम का शिला पूजा है वो शास्त्र बताया है कि ये विष्णु का डायरेक्ट रूप है। जो लंबी कहानी है वो तुलसी महारानी के शाप के कारण भगवान को उन्होंने कहा कि पत्थर के समान पत्थर देते समान तुमने व्यवहार किया है तो पत्थर बन जाओ। तो भगवान बोले कि मैं तुम्हारे उद्धार के लिए ऐसे किया था तो तुम्हारी इच्छा है तुम बन जाओ और तुम मेरे साथ आ जाओ। इसलिए तो भगवान तुलसी के रूप में आते हैं। तुलसी महारानी है, वृंदा देवी जो है तुलसी रूप में आने के रूप में आती है। शालिग्राम जो है वो भगवान का ही रूप है। उसकी पूजा घर में कर सकते हैं क्या? वो जो भक्त है, अगर भक्त है तो भक्त को अपने गुरुदेव की इजाजत से करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने सबको करने के लिए बोला नहीं, कुछ विशिष्ट पर उन्होंने सबको मनाई भी नहीं की है, मना नहीं किया है। और कुछ कुछ भक्तों को उन्होंने शालिग्राम दिया आप पूजा करने को बोला। तो अगर गुरु जो व्यक्ति के गुरु है अगर वो इजाजत देते तो कर सकते हैं। कभी हम मंदिर में मतलब टेंपल ऑल्टर में, टेंपल ऑल्टर में तो क्या विग्रह है तो शालिग्राम क्यों नहीं हो सकते? जरूर हो सकते। नहीं, टेंपल में जो भी होता है गुरु से पूछ के ही होता है ना हमेशा। मतलब अगर कोई एक शालिग्राम है दूसरी शालिग्राम लानी है तो फिर वो मैं आप कहीं जाकर शालिग्राम नहीं ला सकते। वो फिर जो वहाँ जी बी सी है वो बोलेंगे जो गुरु किसी करेंगे और फिर लाएगा। फिर अपन अगर हमको ब्राह्मण दिशा हो गई है तो फिर हम पूजा कर सकते हैं। बाकी विग्रहों की पूजा कर रहे हैं तो हम शालिग्राम की पूजा कर सकते हैं। पर व्यक्तिगत रूप से अगर करना है तो व्यक्तिगत रूप से इजाजत नहीं चाहिए। तभी जो ये ईश्वर परिषद का दूसरा सेक्शन अभी कम्प्लीट हो गया हमारा। तीसरा सेक्शन क्या है? जो विद्या और अविद्या के बारे में। कैसे अभी क्या हो गया? अभी ईश्वर परिषद में सबसे पहले सेक्शन में कैसे जो परम ईश्वर है उनके संबंध उनके साथ हमें जीवन जीना चाहिए, उनके इच्छा के साथ ईशावा के तत्वों के अनुसार जीवन जीना चाहिए, उसके विपरीत नहीं। तो जो ईश्वर है कौन इसके बारे में वर्णन अगले पांच श्लोकों में हुआ, चौथे से आठवीं श्लोक में। अभी ये ईश्वर का ज्ञान प्राप्त कैसे करें इसके बारे में वर्णन तीन श्लोकों में आता है। तो तीन श्लोकों में विद्या और अविद्या की तुलना की गई है। तो हम श्लोक के साथ करेंगे। अन्य देवाहु विद्या सॉरी नवाश्लोक है अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूयैव ते समो यौ विद्यायां रतः। अंधम तमः प्रविशन्ति, इसका मतलब क्या है? अंधकार में प्रवेश करेगा कौन? प्रवेश करेगा ये अविद्या उपासते, जो अविद्या की पूजा करता है वो अंधकार में जाएगा। ततो भूय इवते तमो, और उससे भी बड़े अंधकार में व्यक्ति जाएगा जो यहु विद्यायाम रतः, जो तथाकथित विद्या की पूजा करता है। तथाकथित विद्या की पूजा करता है मतलब क्या? कि जो काल्पनिक तरह से भगवान की पूजा करता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि तो विद्यायाम रतः का मतलब है कि जो निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करता है, जो मायावादी है। श्लोक है इसका तात्पर्य बड़ा महत्वपूर्ण है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई किसी के पास विद्या है साधारणतः वो जिसके पास अविद्या है उससे ऊंचा होना चाहिए, जिसके पास ज्ञान नहीं है उससे बेहतर हो व्यक्ति जिसके पास ज्ञान है। पर प्रभुपाद जी बोलते हैं वो तभी है जब वो ज्ञान सही ज्ञान है। अगर वो गलत ज्ञान है तो वह खतरनाक है। तो जो आधुनिक समाज है, आधुनिक समाज में जो ज्ञान दिया जाता है, जो शिक्षण पद्धति है, उसमें जो ज्ञान मिलता है वह वास्तव में अज्ञान से भी खराब है। क्यों अज्ञान से खराब है? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अंधा है तो बुरा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, पर अगर वो अंधा है पर वो समझता नहीं मैं अंधा हूं, वो सोचता है मुझे आंखें हैं, तो और खतरनाक है, क्योंकि वो उसको समझ नहीं आ रहा अंधा हूं, वो चलता है। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग नींद में चलते हैं, सोमनाम्बुलिज्म कहते हैं, वो नींद में चलते तो उनकी आंखें बंद करके चलते हैं उधर उधर, तो कभी कहीं भी जाएगा कहीं गिर जाएगा कुछ हो जाएगा, तो अपनी दुनिया में उनकी आंखें भी बंद रहती है तो चलते हैं, तो क्या देख रहे कैसे देख रहे बड़ा विचित्र है। तो वास्तव में उस तरह से जो व्यक्ति आध्यात्मिक से सोए हुए पर तथाकथित ज्ञान भौतिक ज्ञान है उनके पास, भौतिक ज्ञान से क्या करते हैं वो, भौतिक ज्ञान से वो सोचते हैं कि हम प्रगति करेंगे। तो एक तो है अज्ञान में है, पर अज्ञान में होते हुए सोचना कि मेरे पास तथाकथित ज्ञान है, मैं बहुत बड़ा विद्वान, वो और खतरनाक है। मतलब क्या है, अंधा हो तो बुरी बात है, पर अंधा होना अंधेपन के को न जानना ये और बुरा है। अगर मैं अंधा हूं इसलिए मैं बीमार हूं तो बुरा है, पर मैं बीमार हूं मुझे पता ही नहीं बीमार हुए तो क्या होगा, वो बीमारी और बढ़ती जाएगी और फिर मैं नाश हो जाएगा मैं। तो इसीलिए जो आधुनिक समाज की जो ज्ञान है वो क्या करता है, लोगों को आध्यात्मिक तत्वों के बारे में अज्ञान में रखता है, आत्मा क्या है, भगवान क्या है, उनका संबंध क्या है, क्या कुछ भी ज्ञान नहीं मिलता है, पर बड़ा अहंकार होता है। तो जो आधुनिक समाज है उसको जो ज्ञान मिलता है वो क्या है, वो ज्ञान रूपा जी बोला करते थे ये बहुत खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है भौतिक दृष्टि से है, मानसिक दृष्टि से है, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से। शारीरिक दृष्टि से कहते रूपा जी बोला करते थे कि लोग पहले से एक दूसरे को मार रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, ऐसे शस्त्र बना रहे हो जिससे कि लोग हजारों की संख्या में दूसरे को मार डाले। जो आइंस्टाइन थे, आइंस्टाइन पिछले शताब्दी के सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं, और आइंस्टाइन ने ही वो संशोधन किया जिसके कारण बाद में अणुबम बने, और अणुबम से लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई। तो मतलब क्या, लोग वैसे भी मृत्यु हो रही है पर ऐसे अणुबम बना दिए गए कि उससे लाखों की संख्या मृत्यु हो गई। पिछले बार जब जन्माष्टमी हुई थी तब हमारे पुनावंदे ने पुलिस बहुत अच्छी सिक्योरिटी हमको रखना चाहिए, तो बता रहे थे कि अभी अभी जो बम थे, बम ऐसे बम बन गए हैं कि मोबाइल साइज का बम होगा, और मोबाइल साइज इतना छोटा, पर वो जब विस्फोट होगा तो वो अग्नि नहीं फैलाता है, वो क्या करता है, वो जंतु फैलाता है। तो मोबाइल के अंदर जहरीले जंतु होते हैं, और मोबाइल विस्फोट होगा तो 6 मील इतने से मोबाइल से 6 मील तक जहरीले जंतु फैलेंगे, और 6 मील तक वो जो लोग ऐसा जहरीले जंतु में आंखों से अंदर जाएंगे और मर जाएंगे। कहां से आया है ये, तंत्र ज्ञान से आया है। तो ये क्या है, मानव बुद्धि का दुरुपयोग है। असल में छोटा सा क्या है मोबाइल, उसको विस्फोट करेंगे तो इतना खतरनाक है। तो मृत्यु तो आ रही है, पर मृत्यु को तेजी से कैसे लाना है इसके बारे में ये ज्ञान है, जैसे ये अज्ञान है। उस तरह से मानसिक स्तर पर क्या है, मानसिक स्तर पे जो भौतिक ज्ञान है वो लोगों को शांत और संतुष्ट नहीं करता है, वो लोगों को और विचलित करता है, और विचलित करता है, और उत्तेजित करता है। अमेरिका में कई बड़े 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 महाविद्यालय हैं, तो महाविद्यालयों में जो इमारतें होते हैं, इमारतों के चारों ओर वो नेट रखते हैं। क्यों नेट रखते हैं, क्योंकि लोग ऊपर जाते हैं, ऊपर से आत्महत्या कर देते, तो आत्महत्या कर देते हो क्या, तो बाजू में नेट रखेगा तो वो मरेगा नहीं, नेट वो नेट में जाली में गिर जाएंगे। तो प्रभुपाद जब अमेरिका गए वो बोले कि तुम क्या, तुम्हारे संस्कृत क्या प्रगति है, तुम बड़े बड़े गगनचुंबी इमारतें बनाते हो, फिर उसके ऊपर चढ़ते हो, उधर से पूछ के आप आत्महत्या करते हो, क्या फायदा है। तो वास्तव में मानसिक स्तर पर कोई शांति नहीं है। ऐसे बताया कि हर साल में 10 लाख लोग आत्महत्या करते, साल में 10 लाख मतलब हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता। मतलब जब से हमारा एक क्लास चालू हुआ है तब से 100 से अधिक लोगों ने आत्महत्या कर ली, बहुत खतरनाक है। और क्या होता है, आईआईटी कॉलेजेस है ना, आईआईटी कॉलेज में लोग आत्महत्या करते, तो आईआईटी में ये सबसे बड़े कॉलेज है भारत के, और वहां पे सबसे बुद्धिमान लोग जाने चाहिए। और क्या होता है,
और कि जो संस्कृति है, जो शिक्षण पद्धति है, भगवान के बारे में ज्ञान नहीं देती है, भगवान का आश्रय कैसे लेना इसके बारे में ज्ञान नहीं देती है, तो दुनिया में समस्या आती है, जो टेंशन आता है, उससे क्या होता है, उसका सामना नहीं कर पाते। तो अभी ये इतनी मूर्खता की घटना है, ये परिसत्य घटना है। मैं एक भारत IIT से बताऊंगा और फिर इससे अमेरिका के यूनिवर्सिटी से बताऊंगा। तो भारत में तो क्या एक बार एक महीने में 3 आत्महत्या हो गए IIT, और फिर वो सारे IIT के जो मैनेजमेंट थी बड़ा खतरनाक चीज है, इतने ज्यादा जो आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महत्या नहीं होनी चाहिए। तुमने देखा कैसे आत्महत्या कैसे हो रही है, सब विद्यार्थी क्या करते हैं, वो अपने आप को फैन से टंगाते हैं और रस्सी बांध के आत्महत्या करते हैं। तो फिर वो IIT की कमेटी ने मीटिंग लिया, फैसला किया कि सारे हॉस्टल से फैन निकाल दो, सारे हॉस्टल को एयर कंडीशन करो। तो अभी ये उनका हल था आत्महत्या बंद करने का। अभी जो इतनी मूर्खता है, विद्यार्थी आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, फैन के कारण आत्महत्या नहीं कर रहे वो फैन निकाल दो आत्महत्या कर रहे हैं। वो क्या है, जो स्ट्रेस है, टेंशन है, वो टेंशन के परे कैसे जाना है उसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, इसलिए आत्महत्या कर रहे हैं। पर वो उसका जो जड़ है, जड़ तक नहीं जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ बाहर रूप में निकाल रहे हैं। तो अमेरिका में, भारत में IIT है, वैसे अमेरिका में IV League यूनिवर्सिटी होती है, सबसे बड़े यूनिवर्सिटी उनको IV League कहते हैं। तो उनमें से एक वर्जिनिया टेक नाम की यूनिवर्सिटी थी। तो वहां पे एक बार क्या हो गया, एक कोरिया से विद्यार्थी आया था, उसने गन से लगभग 30-40 लोगों को मार डाला और फिर खुद को गोली मार डाला। तो 30-40 लोगों को मार डाला, उसमें एक भारत की एक विद्यार्थी भी थी, एक भारत के प्रोफेसर भी थे, और क्योंकि ये बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी था, तभी अमेरिका के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वहां पे गए कंडोलेंस के लिए, सांत्वना देने के लिए। और फिर अमेरिका में बड़ी चर्चा हुई कि मेरा भाई अमेरिका में पढ़ाई कर रहा है, तो वो बता रहा था कि यूनिवर्सिटी में जाता है तो जब कॉलेज में जाता है तो क्या है, वहां पे उनको मेटल डिटेक्टर से जाना पड़ता है सब कॉलेज में। तो वो जब तो वो उन्होंने जहाज तो पड़ताल की, कैसे वो ऐसी, ये बहुत बड़ी घटना हुई थी, पर 10 साल पहले से चल रहा है। जो एक लिटिलटन नाम की जगह थी, वहां पे पहली बार एक स्कूल में एक विद्यार्थी बंदूक ले गया, टीचर को गोली मारी, बाकी विद्यार्थी को गोली मारी, तो उसको गोली मार। तो फिर ये अमेरिका के लोग चल रहे क्यों हो रहा है, तो क्या अमेरिका दुनिया का एक ही देश है, बहुत कम देशों में से ऐसे देश है जहां पे बंदूक रखना ये चीज सब लोगों को मिलती है। वो कहते हैं क्या कि अगर आपके पास बंदूक नहीं होगी तो आपके सभी को चोर आ जाएगा, उसके पास बंदूक होगी क्या होगा तुम्हारा, तो इसलिए क्या करते हैं, सबको बंदूक होनी चाहिए, ऐसे वो बोलते। तो वास्तव में जो बंदूक बनाने वाले लोग हैं ना, जो कंपनी है, वो पैसा कमाना चाहती है, तो इसे लोगों में से भय कराती है। तो वो कहते हैं सब लोगों के पास बंदूक है, तो सब लोगों के पास बंदूक होने का ऐसा नियम है, इसलिए कोरिया लड़के के पास बंदूक आ गया था और फिर उसी ने उसे गोली मारती। तो अभी सब लोगों को बंदूक देना ये बहुत खतरनाक पॉलिसी है। तो उन्होंने क्या इसका निष्कर्ष निकाला, ये निष्कर्ष निकालना चाहिए कि विद्यार्थियों के पास बंदूक नहीं होना चाहिए या लोगों के पास बंदूक नहीं होना चाहिए, तो अमेरिकन सरकार ने क्या निष्कर्ष निकाला उसका, कि जब विद्यार्थी कॉलेज में जाते हैं और विद्यार्थियों के साथ में बंदूक लेके जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक विद्यार्थी अगर पागल हो गया और किसी को मारने लगेगा तो वो ज्यादा लोगों के मारने के पहले उसको मार डालना चाहिए। अभी कितना पागल पर है, अगर ज्यादा लोग बंदूक लेके जाएंगे, सब ज्यादा लोग पागल हो गए तो क्या होगा फिर। तो ये केवल बाह्य स्तर पर है, पूरा बाह्य स्तर पर है। तो जो आधुनिक शिक्षण एक तरह से तंत्रज्ञान के स्तर पे बहुत कुछ किया है, पर जो समस्या का जड़ है उस तक पहुंचता ही नहीं है, समस्या का जड़ उस तक पहुंचता ही नहीं। तो क्या होता है कि वो सब बाह्य स्तर पे कार्य करते हैं। तो क्या होता है, अमेरिका में जो लड़के लड़की बहुत करीब से मिलते हैं, तो इसीलिए जब अमेरिकन कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में आते तो आपको आई कार्ड मिलता है, आपका आई कार्ड है, आपका ये नंबर है, आपका ये रोल नंबर है, आपका ये नाम है, ये फोटो है। तो वहां पर जब विद्यार्थी जाते हैं तो उनको आई कार्ड देते हैं और आई कार्ड या कॉन्डोम देते हैं। तो कॉलेज की यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी उनको इस तरह से देते हैं, बोलते हैं कि ये नौजवान लोग पैसे करने ही वाले, तो उनको संरक्षण देना है। अभी वो संरक्षण देना है तो उनको प्रशिक्षण देना चाहिए आत्मनियंत्रण में, इस प्रकार के धर्म से कुछ फायदा नहीं होता है वास्तव में। इसके कारण क्या होता है, पूरा डिग्रेडेशन हो जाता है, पूरा पतन हो जाता है। और
कई बार 13, 14, 15 साल की लड़कियां होती है वो गर्भवती हो जाती है, तो उनको बला क्या बोलते हैं, उनको गर्भपात करना पड़ता है। और इतना खतरनाक है ये कि अभी बहुत से कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस के बाहर ही लंच टाइम एबॉर्शन क्लिनिक होते हैं। लंच टाइम एबॉर्शन, एबॉर्शन भी करना है, 15 मिनट में हम गर्भपात कर देंगे। आप क्या करो, लंच में आ जाओ, लंच के समय आ जाओ और आप गर्भपात, आपका जो कॉलेज की छुट्टी है तो अभी हमने जो ऐसे नियम बनाया है कि अगर कोई लड़की को गर्भपात करना है तो उसको माता पिता को बताने की जरूरत नहीं। तो क्या होता है, गर्भपात वास्तव में ये तो ये पूरी तरह से हत्या है, मर्डर है ये। तो पहले पहले लोग बताया करते थे कि डॉक्टर वगैरह लोग बता रहे थे, वास्तव में ये केवल एक ये एक पेशी को हम निकाल रहे हैं, एक टिश्यू को निकाल रहे हैं। पर हम सोनोग्राफी वगैरह आदि जो ऐसे जो यंत्र नाम है तो उससे देखते हैं, बताया इसके बारे में शिशु कैसे, वो शिशु जब वो गर्भ जो करते हैं गर्भ, हाँ 3 महीने के बाद, तो वास्तव में कैसे होता है जब गर्भपात करते तो बड़े बेरहम कार्य है। क्या होता है, वो एक साइलेंट स्क्रीन नाम का एक वीडियो था, डॉक्टर नेथाथॉन नाम के एक व्यक्ति थे, वो खुद अबॉर्शन करते थे बहुत। पर जब सोनोग्राफी का टेक्नोलॉजी आ गया तो उन्होंने देखा गर्भपात में क्या होता है वास्तव में, तब से उसने डॉक्टर ने गर्भपात छोड़ दिया और गर्भपात के विरुद्ध भी प्रचार करने लगा। तो उन्होंने फोटो डॉक्यूमेंट्री बनाया था, साइलेंट स्क्रीन नाम था, उसमें क्या दिखाते हैं कैसे जो शिशु होता है छोटा होता है तो उनको लगता था कि शिशु केवल एक पेशी है, और जो कैमरा से क्या दिखता है कि जब वास्तव में माँ के गर्भ में वो पीछे से वो यंत्र डालते हैं, और यंत्र डालने कैसे करता है, यंत्र से एक पकड़ जैसे होता है, वो यंत्र को डालते हैं और सबको शिशु होता है, उसका सिर बहुत बड़ा होता है, जब तो जब माँ को बच्चा भी होता है तो सर को निकालने में बहुत दर्द होता है, सर थोड़ा बड़ा होता है, तो वो जब गर्भपात करना होता है तो क्या होता है, यंत्र होता है वो चलाता जाता है माँ के गर्भ के अंदर, तो शिशु छोटा होता है, उसको कैमरा पिक्चर में दिखाते हैं शिशु डर जाता है, क्या आ गया मेरे गर्भ के अंदर, एकदम धूम से चला जाता है, और फिर धीरे धीरे डॉक्टर का वो और यंत्र आ रहा है तो शिशु पटके चला जाता है, यंत्र के उसके पीछे आता है और वो छोटा है कब तक भागेगा, तो बाद में क्या होता है उसको पकड़ लेते हैं, और पकड़ लेते हैं सिर को पकड़ के दबा देते हैं, उसके सिर के खुले हो जाते हैं, और फिर उसके वो यंत्र को ऐसे धार होते तो उसके छोटे हाथ नहीं होते, छोटे छोटे हाथ से निकलने वाले होते हैं, काटते हैं, और फिर जब बाहर निकालते हैं तो वो शरीर मानव का शरीर भी होता है, वो पूरा सिर टूटा हुआ है, हाथ कटे हुए हैं, पूरा क्या ये हत्या है। पर ये हत्या क्यों होती है, हत्या इसलिए होती है क्योंकि व्यक्ति आत्मनियंत्रण नहीं रखते, आत्मनियंत्रण क्यों नहीं रखते हैं, उनको प्रशिक्षण नहीं मिल रहा है, उनको कुशिक्षण मिल रहा है कि इंद्रिय स्वाभाविक है। तो जो 11वें स्तन में वर्णन आता है तात्पर्य में लिखते रहते कि अगर इंद्रिय स्वाभाविक हो जाता है, इंद्रिय स्वाभाविक नौजवान हो जाएगा तो वासनाएं आ जाएगी, वासना आएगी तो वासना में क्या करना चाहिए, स्वाभाविक है ये, आप नियंत्रण आत्मनियंत्रण ये अस्वाभाविक है। तो वहां पर बताया गया है कि अगर इंद्रित्व स्वाभाविक है तो स्वाभाविक पद्धति से क्या होता है, गर्भवती होना और बच्चे को जन्म देना ये भी स्वाभाविक है, गर्भपात भी स्वाभाविक नहीं है, कॉन्डोम भी स्वाभाविक नहीं है, ये पेड़ पे नियुक्त है कॉन्डोम। तो इसका मतलब कि अगर आपको स्वाभाविक ही जीना है तो सिर्फ आधा स्वाभाविक मत जियो, स्वाभाविक जीना है तो हाँ इंद्रित्व करना है, स्वाभाविक है तो उसका स्वाभाविक परिणाम भी क्या है, स्वाभाविक परिणाम है संतान उत्पत्ति होना। अगर स्वाभाविक ताही की बात करनी है तो फिर सारे निसर्ग में प्राणी होते हैं वो स्वाभाविक जो तरह से कार्य करते हैं, शेर और शेरनी कार्य करते हैं, कोई शेरनी कोई गर्भपात नहीं करती है, कोई शेर कोई क्वांटम नहीं इस्तेमाल करता है, क्यों स्वाभाविक जी रहे हैं, तो ये स्वाभाविक नहीं है अस्वाभाविक। तो लोगों को लगता है कि इंद्रियों को नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल है, तो ये स्वाभाविक नहीं है, वास्तव में इंद्रियों को नियंत्रण करना मुश्किल है पर वो इतना मुश्किल नहीं है स्वाभाविक दृष्टि से। हमारे समाज में क्या होता है कि अस्वाभाविक पद्धति से हमारी इच्छाओं को उत्तेजित किया जाता है, जिस तरह से अगर आप किसी अगर फ्रेंड से जा रहे हैं तो अगर कोई गांव से इलाके जा रहे हैं, पहाड़ियों के जंगल के इलाके जा रहे हैं, तो वहां पे दृश्य होते हैं वो मन को उत्तेजित नहीं करते, पर जैसे ही हम शहर में प्रवेश करते हैं तो ऐसे पोस्टर होते हैं, ऐसे लोगों ने वस्त्र पहने होते हैं कि मन उत्तेजित होने लगता है। तो वास्तव में मतलब क्या है, हमारे समाज में
अस्वाभाविक तरह से लोगों के मन को उपजीत किया जा रहा है। तो अस्वाभाविक तरह से मन को उपजीत किया जा रहा है, इसीलिए हमको लग रहा है कि मन को नियंत्रण करना ये अस्वाभाविक है, पर वास्तव में स्वाभाविक है मन को नियंत्रण करना, स्वाभाविक है मन को नियंत्रण करना। और क्या होता है, काम वास्तव ऐसे है, जो आधुनिक समाज जो है, जो युक्ति है, जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी किसी भी इस्तेमाल होती है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसने ही बताया, एक इस्तेमाल होता है झूम करने के, और दूसरा इस्तेमाल यह होता है कि टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रक्शन एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, मास डिस्ट्रक्शन और मास डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन मतलब, डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश, और डिस्ट्रैक्शन मतलब विक्षेप, विक्षेप मतलब लोगों को गुमराह करना। तो अभी एक जो आधुनिक शिक्षण, आधुनिक तंत्रज्ञान से लोगों के मन को और विस्तृत किया जाता है, कैसे कि काम वासना ये सब में स्वाभाविक है, पर अगर कोई छोटे गांव में रह रहा है तो काम वासना आ भी गई तो क्या करेगा व्यक्ति, और तो जो साधारण जगत में जो स्त्रियां होती है, थोड़ी सी स्त्रियां कुछ अच्छी दिखने वाली होती है, और बहुत अधिकारी स्त्रियां होती है इतना अच्छी दिखने वाली नहीं होती है, तो अगर वो काम वासना आ गई तो उसको क्या करना पड़ेगा, विवाह करने का पड़ेगा, फिर पूरा वो काम वासना को पूरा करना है। अगर अगर धर्म का पालन नहीं करना है तो गांव में कोई वेश्या होगी तो वेश्या के पास चला जाएगा। पर आधुनिक तंत्रज्ञान के कारण क्या होता है कि अगर सारे दुनिया भर के जो कामों काम उत्तेजना कर, काम वासना उत्तेजित करने वाले जो चित्र है, जो मूवीज है, वो सब एक जगह पे आ जाते हैं। अभी एक मूवी में, एक टेलीविजन में क्या आता है कि जो दुनिया भर की जो गंदगी है वो एक बक्से में आ जाती है, और उसके कारण लोगों का जो मन की वासना है वो और बढ़ जाती है। इसलिए तंत्रज्ञान से क्या होता है, तंत्रज्ञान का उपयोग इसलिए हो रहा है लोगों की जो निचली इच्छा है उसको बढ़ाने के लिए हो रहा है, तो लोगों की जो विध्वंस करने की इच्छा है और जो स्वार्थी भोग करने की इच्छा है उसको बढ़ाया जा रहा है। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य बोलते हैं कि मणिनाम भूषणम सर्प किम असौ न भयंकर। चाणक्य पंडित को कोट, चाणक्य पंडित को कोट करते बोलते हैं कि जो सर्प है वो भयंकर है, तो उसे सर्प के सिर पर मणि है तो और भयंकर है वो। तो क्या है, जो भोग करने की प्रवृत्ति है वो सर्प है, पर आधुनिक तंत्रज्ञान जो है वो उसके ऊपर मणि के समान है। तो उसे लगता है कि बहुत प्रगति हो गई है, पर ये प्रगति से क्या हो रहा है, प्रगति से लोग और विनाश की ओर जा रहे हैं। तो इसीलिए जो अज्ञान में है, अभी जो अभी ऐसे नहीं है कि कोई गांव में रह रहा है तो गांव में सब लोग भक्त हैं, गांव में भी लोग अज्ञान में है, अविद्या में है वो, पर उनको इंद्रवृत्ति करनी भी है तो कितनी इंद्रवृत्ति कर सकते हैं, वो थोड़ी बहुत इंद्रवृत्ति करेंगे और उसका उनका फल मिलेगा। पर कोई शहर में आता है तो सारी दुनिया भर की गंदगी जो है उसको उसको देखने को मिलता है, उसका उससे प्रभाव होता है, तो जो विद्या है उससे वो और इंद्रवृत्ति में लगता है। इसीलिए जो अविद्या में है वो अंधकार में जाएगा, और जो तथाकथित विद्या में है वो और अंधकार में जाएगा। तो भूय इवतेतमो यो विद्यायाम रतः, जो तथाकथित विद्या में है वो और बड़े अंधकार में जाएगा। तो आधुनिक समाज जिस तरह चल रहा है तो उस तरह से पाप की जो संख्या है वो और बढ़ रही है, और बढ़ रही है, और जब पाप की संख्या और बढ़ती है तो उससे पाप की प्रतिक्रिया होती है। प्रतिक्रिया क्या होती है, नैसर्गिक उत्पत्ति होते हैं, सुनामी होता है, भूकंप होता है, ये सब क्यों होता है, लोग बुरे कर्म करते तभी होता है। तो इसलिए जो तथाकथित विद्या है ये बहुत खतरनाक है, और हमें, हम जब कॉलेज में विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो वास्तव में उनके मन में इतनी सारी भ्रांत धारणाएं होती है, उन सबको निकालना पड़ता है, और बाद में लोग भक्त बनते हैं। तो अगर किसी को शिक्षण नहीं है तो हमें पश्चाताप करने कोई जरूरत नहीं है, वास्तव में बहुत सी भ्रांत धारणाओं से हम बच गए, गलत धारणाओं से बच गए। जो भक्ति का शिक्षण प्राप्त कर लेते हैं उससे बहुत अच्छे पुजारी बन सकते हैं। अगर शिक्षण है तो शिक्षण इस्तेमाल कर सकते भगवान की सेवा में, शिक्षण नहीं है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी भगवान की सेवा कर सकते। वास्तव में बहुत से अज्ञान से बच गए। तो प्रभुपाद जी तथाकथित विद्या के तीन विभाग बोलते हैं। पहला विभाग है जो मैंने बताया अभी, गॉडलेस मॉडर्न एजुकेशन, कि जो आधुनिक शिक्षण जो है जो बिना भगवान के बारे में नास्तिकवाद का फैला रहा है, नास्तिकवाद के साथ भौतिकवाद को फैला रहा है। दूसरा जो है वेदवाद रहा, वेदवाद रहा मतलब ऐसे लोग जो वैदिक शास्त्रों का दिखाते कि हम पालन कर रहे हैं पर वैदिक शास्त्रों के उद्देश्य का पालन नहीं करते हैं। वैदिक शास्त्र का उद्देश्य क्या है? वैदेश्य सर्वैर अहमेव वैद्य, भगवान कृष्ण की भक्ति करना, वह उसका पालन नहीं करते हैं। तो इसके क्लासिक उदाहरण कौन है? यज्ञिक ब्राह्मण। यज्ञिक ब्राह्मण जो थे दशम स्कंध में बताया गया है कि वो वास्तव में वेदों के अनुसार ही जीवन जी रहे थे, पर क्या कर रहे थे वो? वो भगवान कृष्ण स्वयं आए, कृष्ण पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने क्या किया? यज्ञ चालू रखे, कृष्ण को, कृष्ण के जो वक्ता आए थे, कृष्ण के जो सखा आए थे, उनको उनको ठुकरा दिया। तो वेदवादता मतलब उनके पास ज्ञान है, पर उनके ज्ञान को भगवान से और नहीं ले जाती है, भगवान से दूर ले जाती है। तो इस प्रकार की वेदवादता आज की दुनिया में भी है। आजकल क्या हो रहा है, लोगों को वैदिक संस्कृति में बड़ी रुचि हुई रहती है, क्योंकि योगासन करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जो वैदिक गणित है उसे गणित के संबंध से आसानी से छुड़ा सकते हैं, वास्तुशास्त्र है, इससे जो जो घरों की और इमारत की रचना है बहुत अच्छे से होती है। तो लोगों को वैदिक शास्त्र में रुचि हो रही है, पर वो सोचते हैं कि वैदिक शास्त्र में रुचि हम वैदिक शास्त्र से ज्ञान प्राप्त करेंगे, पर क्या ज्ञान प्राप्त करेंगे? वो ज्ञान जो जिससे हमारे नृत्य में मदद हो, और हमको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं चाहिए, ये कृष्ण वगैरह ये सब कहीं कुछ हो। तो लोग क्या करते हैं, वेदों से सिर्फ भौतिक ज्ञान लेते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लेते हैं। तो ये जो है ये लोग क्या है, वेदवाद रहता है। और ऐसे लोग वास्तव में लोगों को लोग आसान लोग लगता है कि वैदिक शास्त्रों का पालन कर रहे हैं, पर वो वैदिक शास्त्रों का पालन नहीं कर रहे हैं। वे ऐसे लोग लोगों को भी गुमराह करते हैं। और फिर आखिरी तीसरे प्रकार के जो लोग हैं वो है माया परिधान, ये है मायावादी लोग। ये मायावादी लोग हैं, इसके बारे में हम हर चर्चा करें विस्तार से। लोग क्या करते हैं, वैदिक शास्त्रों से कुछ ऐसे श्लोक निकाल लेते हैं जिससे लोगों को दिखाते हैं कि हम सब भगवान हैं, मैं भगवान हूँ, आप भगवान हैं, और इस तरह से लोगों को गुमराह करते हैं। तो जो अभी आपको तीन प्रश्न पूछे गए हैं जो इसके आप ऐसे लिखने हैं, तो उसके जवाब अभी के श्लोकों में 9वां, 10वां, 11वां, फिर 12वां, 13वां, 14वां, 12वां, 13वां, 14 श्लोक में जो देवी देवताओं की उपासना है उसके उसका उसके बारे में जो सवाल है उसका जवाब आपको मिलेगा। और 10वां, 11वां कल का श्लोक जो है उसमें हमको ये जो मायावाद है उसका कैसे उसका खंडन कैसे करना है उसके बारे में जवाब मिलेगा। तो आज के प्रतिज्ञा जिसको सवाल है थैंक यू वेरी मच श्री शो किशत की प्रभुपाद की गौर भक्तवृंद की
फर्म होते हैं जो माँ के घर में जाते हैं, स्त्री के घर में जाते हैं, तो उनमें से एक स्पर्म होता है वो एक अंडा जो होता है उससे मिलन होता है, फिर उससे शिशु उत्पन्न टिशु होते हैं। तो अभी बाकी जो स्पर्म है उसमें आत्मा हो सकता है नहीं हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर एक स्पर्म में आत्मा होना ही चाहिए, और ऐसे नहीं है कि नहीं होगा। ऐसे है कि जिसे कहते हैं कि जहाँ पे भी मौका मिलेगा आत्मा को शरीर प्राप्त करने का, साधारण टाइम आत्मा को शरीर के उतार आत्मा शरीर के उतार होता है तो उसको मिल जाएगा। और अगर ऐसे होता है कि जो स्पर्म से जो आत्मा है वो किसी और हमारे शरीर में या किसी और शरीर में चला जाएगा और वहाँ से आगे बढ़ेगा।
बट ऑलरेडी हम लोग के शरीर में होता है, उसमें ऐसे आत्मा होती है, तो ये भी एक अपराध हो जाता है।
क्या करना चाहिए हमें, व्यवहार कुछ देखना चाहिए। अपराध अगर नहीं करना है तो कुछ चीज़ें कर सकते हैं हम, रात को लेट नहीं खाना चाहिए। दूसरा है कि जब हम सोते हैं तो के नसीहा से बोल सकते हैं, नसीहा सोने के पहले एक बार में कभी बात ना कर सकते हैं। और तीसरा है कि दिन में चिंतन अवॉइड करना चाहिए,
चिंतन
में दोस्ती अगर आती है तो उसे विचार करते हैं। कैसे होता है कि जो वीर्य है वो सारे शरीर में सूक्ष्म रूप में होता है, और जब काम वासना बारे में चिंतन होता है तो क्या होता है, वो सूक्ष्म रूप से स्थूल रूप में आ जाता है। स्थूल रूप में जब आता है तो वो पेशी जो ये थैली है, थैली के अंदर आता है, जब उस थैली में आ गया तो फिर वो कभी कभी बाहर निकले, तो फिर वो अगर दिन में नहीं निकला तो रात समझा। तो हमें क्या करने का प्रयास करना चाहिए कि वो थैली में आने ही नहीं देना है। तो वो कैसे होगा, वो दिन में अगर हम चिंतन अवॉइड करेंगे तो जो शुद्ध रूप में जो वीर्य है वो शुद्ध रूप में होगा ही। तो इसलिए अगर कोई चिंता चालू होगा तो इंद्र हरे कृष्ण महामंत्र बोल सकते हैं। और अगर हमको कभी क्या होता है नाइटफॉल होता है, तो नाइटफॉल होने वाला तब जाग आ जाती है, अगर जाग आ गई तो क्या कर सकते हैं, कभी हम एक्चुअली तुरंत सांस बंद कर देते। क्या होता है मन बहुत कल्पना कर रहा होता है, ये करना है वो करना है, तो ये करूँगा इस तरह से वो करूँगा उस तरह से वो करूँगा, पर मन की उससे प्राथमिक जरूरत क्या है, सांस लेना। सांस लेना बंद कर दिया ना हमने कभी क्षण के लिए, और मुंह भी बंद करेगा, मुंह नहीं खुलने तो मुंह से सांस ले जाती। तो क्या होता है कि मन अपने कल्पना की जगह से थक कर नहीं चल रहा है, सांस नहीं मिल रही, सांस नहीं मिल रही। तो क्या होता है वो हमेशा नहीं करना चाहिए, पर कभी कभी बहुत मन जरूरत है तो सांस अगर बंद कर दी तो क्या होता है उससे वो इंद्र तृप्ति की वासना तब के लिए थम जाती है, और वो जो जीजे बाहर निकलने वाला है वो सब रुक जाते हैं। क्या समझे क्या हो रहा है, क्या है, सांस बंद हो गई तो मन जो भी उधर उधर कामना कर रहा है कल्पना कर रहा है उसे ठक करके नीचे शरीर के सर पर आ जाता है, सांस कहाँ मिली, सांस कहाँ मिली। और फिर वो जो वैसे विचार बंद हो गया तो जो नाइफ इंजेक्शन हो रहा है वो भी कम हो जाता है और रुक जाता है। पर ये रेगुलर इसे नहीं करना चाहिए, इमरजेंसी में कर सकते हैं, पर रेगुलरली क्या करना चाहिए, चिंतन कम कर देना। Thank you.